ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేష్ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. హమ్ ఆజ్ శ్రీమద్ భాగవత్ కే ఏక్ ఖాస్ సాధన భక్తం కే లియే లాయక్ ఏక్ సుందర్ అధ్యాయ పడనే వాలే హ్యాం. యే తీసరే స్కంద్ కే 14వా అధ్యాయ హ్యాం. అగర్ ఆప్ లోగ్ వృందావన్ జాయేంగే, వృందావన్ మే కార్తీక్ మహీనే మే కభీ కభీ 50 సే జ్యాదా భాగవత్ సప్తాహ చల్తే హ్యాం. తో యే భాగవత్ సప్తాహో మే ఆప్కో దేఖనే కో మిల్తా హై, జ్యాదా లోగ్ దశమ స్కంద్ కే భగవాన్ కృష్ణ కీ లీలా జో రాధాజీ ఔర్ అనేక గోపియో కే సాథ్ హుయి రాస నృత్య, ఇస్కే బారే మే అనేక లోగ్ కథా కర్తే హ్యాం వృందావన్ మే. తో ప్రభుపాద్ జీ ఉన్కే కితాబో మే తాత్పర్య మే లిఖతే హ్యాం కి భాగవత్ కే దశమ స్కంద్ జో హై భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కే ముఖారవింద్ సే తులనా కియా గయా హై ఉస్కో, ఆర్ పహలే ఔర్ దూసరే స్కంద్ జో హై భగవాన్ కే పదకమలో సే తులనా కియా హై. ఇస్ తరహ్ భాగవత్ కే అలగ్ అలగ్ స్కందో కో అలగ్ అలగ్ భగవాన్ కే అంగో సే తులనా కియా గయా హై ఇసే. తో అగర్ కోయి వ్యక్తి భగవాన్ కే సుందర్ ముస్కరాహట్ కే సాత్ చెహరే కో దేఖనా చాతా హై కోయి, ఉస్ వ్యక్తి కో పహలే భగవాన్ కే పదకమలో కి సేవా కర్నా చాహియే పహలే. అగర్ కోయి సేవా అభిలాషి హోగా, సేవా కర్కే చిత్త కో శుద్ధ కర్కే ఉస్కే బాద్ ఏక్ వ్యక్తి భగవాన్ కే ముఖ కో దేఖనే కే లియే లాయక్ బన్తా హై. తో భారత్ మే దేఖా జాతా హై కి భాగవత్ సప్తాహ కర్కే లోగ్ జో భీ కర్తే హై సీదా దశమ స్కంద్ మే పహుంచ్ జాతే హై, ఔర్ దశమ స్కంద్ కో అగర్ కోయి సునేగా సీదా కృష్ణ కి వృందావన్ కి లీలాయే యో పరాకాష్ఠా మానే జాతే హై, ఉచ్చ కోటి కే పరమహంస భక్తోం కే లియే హై. కుంతి మహారాణి ఖుద్ హీ బతా రహీ హై ఉన్కే ప్రార్థనాఓ మే, తథా పరమహంసానాం మునీనామలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమ హి స్త్రియః. హే కృష్ణ, ఆప్ తో మేరే జైసే సాధారణ స్త్రీయో సే కైసే హమ్ లోగోం కే లియే ప్రాప్త కియా జా సక్తా హై, ఆప్ జైసే మహాన్ పరమ సత్య భగవాన్ హమ్కో హమారే అందర్ కుచ్ యే యోగ్యతా నహీ హై ఆప్కో ప్రాప్త కర్నే కే లియే, లేకిన్ ఆప్కో జాననే వాలే హోతే హై జో పరమహంస హోతే హై, జిన్కా చిత్త శుద్ధ హో గయా హై, సబ్ మల్ సే ముక్త హై జిన్కా చిత్త. ఇస్లియే వో బోల్ రహీ అప్నే ఆప్కో కోస్ రహీ హై కి మేరే అందర్ కుచ్ యోగ్యతా నహీ ఆప్కో జాననే కే లియే, ఐసే బోల్ రహీ హై కుంతి. తో ప్రభాజీ బోల్తే హై ఉస్ తాత్పర్య మే క్యోంకి కుంతి అప్నే ఆప్కో అయోగ్య మాన్ రహీ హై ఇస్లియే వో భగవాన్ కో సమజనే కే లియే లాయక్ హై. అగర్ కోయి వ్యక్తి అప్నే ఆప్కో లాయక్ మాన్కర్ సీదా దశమ స్కంద్ మే పహుంచ్ జాయేగా తో అయోగ్య మానా జాతా హై ఇసే వ్యక్తి, క్యోంకి దశమ స్కంద్ కే అందర్ ప్రవేశ్ కర్నే కే పహలే భగవాన్ కే సంబంధ్ మే ఔర్ కుచ్ లీలాఓ కో సున్నా హోతా హై. జైసే హమ్ లోగ్ పూర్వ సత్రో మే చర్చా కీ హై కి కైసే మహావిష్ణు సబ్ బ్రహ్మాండం కో రచాతే హై, ఉస్కే బాద్ గర్భదక్షాయ విష్ణు ఏక్ బ్రహ్మాండ కే అందర్ ప్రవేశ కర్కే ఓ 14 భువన కో రచాతే హై, జిస్మే బ్రహ్మాజీ కో అప్నే పుత్ర కే రూప్ మే ప్రాప్త కర్కే పంకజనాభి కే రూప్ మే ఓ బ్రహ్మాజీ కో सर्ग विसर्ग का सेवा देते हैं उनको है? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति ईशान कथा मनमंत्र निरोध मुक्ति ही ये नौ तत्व हैं। ये नौ तत्व होने के बाद दशम तत्व है आश्रय तत्व है। तो आश्रय तत्व कृष्ण है जो दशम स्कंद में जिनकी वर्णन है। लेकिन पूर्व नव स्कंदों में ये नौ विषयों के बारे में चर्चा है। तो इसलिए अगर कोई कृष्ण के नन्हे मुन्ने बच्चे के बराबर जो लीला करते हैं भगवान वृंदावन में, नहीं तो ये किशोर अवस्था में जो भगवान रास नृत्य करते हैं इत्यादि को सुनना हो किसी को भी, उनको पहले अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा उधर प्रवेश करने के पहले। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अनेक लोग भारत में मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं, आते हैं जाते हैं कथा में, लेकिन उनको पहले कैसे उनके इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। पहले जितेंद्रिय बोलते हैं, हम इंद्रियों को जब जीतते हैं मन के मलों से ऊपर जब उठते हैं, जब हम एक आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक भावना के साथ हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते समय सुनते समय पेश आते हैं तभी हम समझ पाएंगे। इसलिए हम कृष्ण के लीलाओं को सुनने के पहले हम इधर पढ़ रहे हैं आज तीसरे स्कंद के, ऐसे एक कथा आता है तीसरे स्कंद में। इस कथा का सारांश मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम कथा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। एक बार ऐसे हुआ कि सब देवताओं ने देखा कि आसमान में बहुत घना अंधकार छा गया। ये इतना ही नहीं था कि अंधकार आया है, लेकिन साथ साथ वो अंधकार बहुत गर्मी भी फैलाने लगा। सब देवता बहुत चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्या कुछ असुर आ गया क्या, क्यों इस तरह के वातावरण में परिवर्तन आया है। तब ब्रह्मा जी ने बोला उनको, अच्छा प्रश्न लेकर आप लोग आए हो, बैठ जाओ कथा सुनो, और कथा के साथ साथ में इस घोर अंधकार का कारण में मैं बता दूंगा आपको। इस तरह बोलकर ब्रह्मा जी सब देवताओं को बिठाकर सुनाया उन्होंने वैकुंठ धाम के संबंध में। और उस कथा में उन्होंने बोला कि वैकुंठ यम न ब्रजन्ति, बताते हैं कि यम न ब्रजन्ति मतलब जो इस दुनिया के लोग कभी वैकुंठ के बारे में एकाध बार सोचते हैं, बाकी से अपने ही कामकाज में पड़े रहते हैं लोग, संसार को चलाने में, खाने पीने की व्यवस्था करने में, इंद्रिय भोग करने में समय बीत जाता है इस दुनिया में साधारण जीव का। प्रहलाद महाराज ने ऐसे कैलकुलेशन किया है, उन्होंने बोला कि बच्चा जन्म लेते ही पहले 10 साल बीत जाता है खेल कूद में मजे में, बलून को कर दो खिलौना को कर दो इनमें चला जाता है 10 साल, और आगे के 10 साल टीनेज में एक लड़का लड़की के पीछे करता है भागता है उसमें स्वप्न देखने में और सिनेमा देखने में चला जाता है, और एक व्यक्ति के अंतिम 20 साल जो होता है बिस्तर में ही लेटा पड़ा रहता है वो मलमूत्र करते हुए, और कभी कभी रिश्तेदार भी देखते हैं कि और कितना समय जाने वाला है इसका, तो कभी कभी लोग थक जाते हैं, कभी कभी 20 साल वो बिस्तर में लेटा रहता है, इसे बहुत दर्ददायक जीवन है वो। कितना हो गया अभी 40 साल गुजर गया, पहले का 20 और अंतिम 20, तो 60 साल जो बचा है उसमें भी एक व्यक्ति अगर इंद्र तृप्ति करने वाला हो तो 12 घंटा सोता है दिन में, ऐसे बताते हैं प्रहलाद। कुछ लोग 8-10 घंटा सोते हैं, तो लोग 12 घंटा भी सोते हैं कुछ लोग, इसका मतलब वो 60 साल में कितना 30 साल निकल गया। तो बाकी 30 साल में अगर एक व्यक्ति 10 घंटा काम करता हो अपने धंधा के लिए, नहीं तो बिजनेस के लिए बाहर जाकर काम धंधा करके पैसा अर्जित करके आना पड़ता है उसके लिए, अगर 12 साल दिन में 12 घंटा बचा है उसमें 10 घंटा काम करता है तो कितना बचता है, 2 घंटा बचता है। इसलिए 5 ही और 30 साल में 25 साल ऐसे गुजर जाता है काम काज में, 5 साल बचता है अगर हम 100 साल जीते हैं तो हा? लेकिन अगर आजकल 100 कितना लोग जीते हैं, 70-80 में चले जाते हैं, निकल जाते हैं, इसका मतलब है 5 से कम 3-4 साल हम बोल सकते हैं जो बचता है हमारे हाथ में, कम से कम उस 3-4 साल का हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसे प्रहलाद बताते हैं ऐसे। इसलिए हम लोग सोच लेना चाहिए कि 24 घंटा जो है हमारे पास, उसमें कई समय हमारे समय ये शरीर की मेंटेनेंस में चला जाता है। हमारा शरीर एक कार के बराबर है ना, ये कार को अरे एक होस पाइप लेकर उसको सफाई करो, उसमें पेट्रोल डालो, उसमें हवा भरो, साफ सुथरा रखो, टैक्स भरो, ये सब करने के बाद हम कार को इस्तेमाल कर पाते हैं उसको। इस तरह शरीर को भी ठीक ठाक रखने के लिए कितना समय शक्ति चला जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को भगवान संबंधित विषयों को, इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला कि हे देवता लोग, आप लोग हमेशा अपने ही मजे में खेल कूद में हो, कभी भगवान के बारे में सोचते नहीं हो, लेकिन अभी आओ, मैं बताऊंगा इसका कारण। तो देवताओं को कारण पूछना था, कैसे काला काला अंधकार छा गया आसमान में, इसलिए वो लोग आकर सुने। तो वैकुंठ के बारे में सुंदर वर्णन दिया उन्होंने। उसके बाद बोला कि उस वैकुंठ के द्वार में दो द्वारपाल खड़े थे, जय विजय। एक दिन उन्होंने चतुष्कुमारों को देखकर रोका, उनको अंदर जाने से मना किया, इसके कारण वो चतुष्कुमार कुपित होकर श्राप दिया जय विजय को कि आप लोग असुर बन जाओ इस भूलोक में जाकर। तो उस समय दोनों जय विजय, भगवान का भी वो इच्छा था कि वो असुर बने भूलोक में जाकर, ताकि भगवान उनके साथ युद्ध कर पाए। तो भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होता है वैकुंठ में, लेकिन उधर वैकुंठ में कोई युद्ध करने वाले नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि सब लोग उनके ही भक्त हैं। भक्त भगवान के साथ कैसे युद्ध करेगा, नहीं करेगा। इसलिए भगवान सोचते हैं कि वो जब असुर बनेंगे, मैं उनके विरुद्ध पक्ष में लड़कर उनके साथ लड़ाई में मैं थोड़ा खुशी मनाऊंगा। इस तरह सोचकर भगवान इस दुनिया में अपने ही भक्तों को वो भेजते हैं जय विजय को। तो आप लोग जानते ही हो कि जय विजय हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंडवक्र, ऐसे नाम से प्रसिद्ध 6 असुर बने, 2-2 बार, दो दो लोग ऐसे अलग अलग लीला में आए। तो अभी ब्रह्मा जी ने बोला कि अभी दिति के गर्भ में ये 2 लोग हैं, कौन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और ये बच्चे आ चुके हैं उनके गर्भ में, लेकिन बाहर निकलने के पहले इतना उत्पात मचा रहे हैं। जरा सोच लो, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, आने के पहले इतना अंधकार छा गया आसमान में, मतलब बहुत बड़ा अपशकुन फैल रहा है कि ये लोग बाहर निकलने के बाद विष्णु के विरुद्ध काम करेंगे, दुनिया में विविध तरह के उत्पात को मचाएंगे सब जीवों को, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए समस्या होगा, इस तरह ये करने वाले हैं। लेकिन अंततोगत्वा विष्णु आकर ऐसे असुरों को मार ही देते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी इस विषय के बारे में बोले। लेकिन ये 2 लोगों का असुरों का जन्म कैसे हुआ दिति के गर्भ में, उसके संबंध में वर्णन आता है इस अध्याय में। इस अध्याय का सारांश क्या है, ये कश्यप हैं, उनके धर्मपत्नी दिति है। कश्यप की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। अदिति देवताओं के माता है और दिति असुरों के माता है। तो ये असुरों की माता जो दिति होती है, ये इस तरह एक बार सोचते हैं कि मेरे जो सहपत्नियाँ जो होती है दूसरी, उनको बच्चा दिया है मेरे पुरुष ने, मेरे पति ने, लेकिन मुझे अभी तक बच्चा नहीं दिया है। लेकिन वो इच्छा करती है कि मुझे भी इस तरह ऐसे बच्चे चाहिए जो इंद्र के विरुद्ध पक्ष में जो असुर होते हैं वो होते हैं, असुर बोलते हैं उनको, वो विष्णु के भी विरुद्ध हैं और देवताओं के भी विरुद्ध हैं वो लोग ऐसे। इसलिए ये दिति से जन्म लेने वाले असुर होते हैं, लेकिन असुर वो कैसे बनते हैं वो ये अध्याय में बताया गया है। क्योंकि दिति के अंदर ये ईर्ष्या भावना जागृत होता है। उस ईर्ष्या भावना क्या है, मेरे सहपत्नियों को पुत्र है, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे तुरंत पुत्र चाहिए, उनके साथ कंपटीशन करती है, स्पर्धा करती है उनके साथ। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि शाम के समय जब सूर्य का अस्तमन होने ही वाला है, उस समय दिति कश्यप को बोलती है कि अभी तुरंत मुझे बच्चे चाहिए ताकि मैं भी सहपतियों को बता सकूंगी कि मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन कश्यप बोलते हैं उसको ये सही समय नहीं है संभोग के लिए, और ये गायत्री करने का समय है, इसमें तुम इस तरह के अपकार्य में कुकार्य में हम लगेंगे तो इसके कारण जो पुत्र पैदा होगा बहुत बड़ा खतरनाक पुत्र पैदा होगा। इस तरह वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि माता पिता को गर्भदान संस्कार करना चाहिए। उन दिनों में गर्भदान संस्कार लिए बहुत कुछ पूजा पाठ वगैरह होता था। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल करके इस्कान के लोगों को बोला कि हम पति पत्नी 50 माला करना चाहिए, कुल मिलाकर नहीं अलग अलग, पत्नी भी 50 पति 50 माला करना चाहिए। करने के बाद भगवान गुरु उनको प्रार्थना करके ऐसे एक जीव को आकर्षित करे योनि में जो जिनके अंदर साधु गुण होंगे, बहुत अच्छे गुण होंगे, ताकि उस जीव को आकर्षित करके जन्म देकर उस बच्चे को भक्त बनाकर बड़ा करके वो ऐसे भक्त बनना चाहिए जैसे ध्रुव महाराज बने, अपने माँ को भी उद्धार कर पाए वो। इस तरह माता और पिता अगर दोनों धार्मिक होते हैं, कृष्ण भावनामृत में जगे होते हैं, ऐसे बच्चे को लाते हैं इस दुनिया में। तो इस अध्याय में हमें अनेक विषय चीज पढ़ने को मिलता है। एक है दिति की गलती, लेकिन गलती करने के पहले उसका मनोगति क्या था, गलती करने के बाद जब उसको डर आता है कि अभी हमें दंड प्राप्त होने वाला है शिव जी से, तभी उसकी मनोगति क्या होता है, कैसे माफी मांगती है, ये एक चीज सीखने लायक है इस अध्याय में। दूसरा चीज है उनका पति कश्यप जो है उनका कर्तव्य क्या है, उनका स्थिति क्या है, इसके बारे में भी इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह वर्णन है। और तीसरा है और एक विषय के बारे में बताया गया है इधर कि दिति बहुत आनंदित हो जाती है जब पता चलता है दिति को कि विष्णु के हाथ से बच्चे मरेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर विष्णु के हाथ से मरेंगे तो ये तरेंगे ज़रूर, इस दुनिया को पार करके वो उनको मोक्ष मिल जाएगा, इस तरह सोचकर वो कुछ आनंद मनाती है। तो दिति की बोलचाल में और कश्यप के बर्ताव से हमें बहुत कुछ सीखने लायक हैं इस अध्याय में, और हम इस अध्याय को दो सिटिंग में हम पूरा करेंगे, आज आधा करेंगे और अगले बार हम और आधा हम पूरा करेंगे इसका। ये 14 अध्याय के शुरुआत में 1-4 श्लोकों में विदुर जी और भी कुछ पूछताछ करते हैं इसमें, और उनके इसके बारे में पूछते हैं, नीला वराह श्वेत वराह इत्यादि के बारे में पूछते हैं, और मैत्रेय उनकी प्रशंसा करते हैं 5वें श्लोक से लेकर 7वां तक, 5, 6, 7 में उनकी गुणगान करते हैं। हम शुरू करेंगे 8वें श्लोक से, यू कैन गो टू 8th श्लोक। द्वितीर्दाक्षायणी क्षत्तर मारीचं कश्यपं पतिं अपत्यकामाचकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता अनुवाद पढ़िए।
दक्ष कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की।
इधर बताया गया कामेच्छा, लेकिन दो तीन श्लोक के बाद आपको पता चला गया कामेच्छा नहीं था उसका, लेकिन ईर्ष्या था, क्योंकि वो कामेच्छा करके बोलती है कश्यप को, लेकिन उसके मन में क्या था भाव, उनका ईर्ष्या था सहपत्नियों के साथ। आगे का ये पढ़िए अनुवाद 9वां।
सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे।
हाँ, दितिरुवाच येषमां त्वत्कृते विद्वन् काम आतशरासनः धुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः अनुवाद पढ़िए।
उस स्थान पर सुंदरी दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है।
तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है, ये दीति के बोलने का ढंग ऐसे होता है क्योंकि वो उनको उत्तेजित करना चाहती है। किसको? कश्यप को, क्योंकि कश्यप उसके बात को गंभीरता से ले, इस तरह सोचकर वो दीति इस तरह की बात करती है, क्योंकि नहीं तो इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा वो। तो शास्त्र बताते हैं पति पत्नी जब साथ में आते हैं इसको विवाह यज्ञ बोलते हैं। और आपने सुना है कन्यादान नाम भी सुना है आपने, एक पिताजी अपने कन्या को दान में देते हैं एक पुरुष को, हाँ इसलिए दान में देना कन्यादान बोला गया है। और इसको विवाह यज्ञ बोला गया है, क्यों यज्ञ है? ब्रह्मचारियों के लिए उनका कान जो होता है ये यज्ञ कुंड माना गया है। और शास्त्र के वचन वाणी जो होता है वो आहुति है। तो ब्रह्मचारियों को बार बार कथा सुन सुन कर ये कथा का दिव्य वाणी उनके हृदय में प्रवेश करके ब्रह्मचारी लोग जग जाना चाहिए, इस दुनिया से विरक्त भावना उत्पन्न करके भगवत धाम लौट जाना चाहिए। ये ब्रह्मचारियों के लिए विधि बताया गया है। इस तरह गृहस्थों के लिए एक स्त्री की योनि यज्ञ कुंड माना गया है और पुरुष के वीर्य के आहुति उसको आहुति माना गया है। और इस तरह स्त्री और पुरुष साथ में शादी करके बच्चे को उत्पन्न करना भी एक तरह का यज्ञ माना गया है शास्त्र में। और कब ये यज्ञ होगा? दोनों स्त्री पुरुष बच्चे को पैदा करके बच्चे को गुरुकुल में भेजकर अब 40 तरह के संस्कार हैं, उन संस्कारों को देकर अच्छी तरीके से बड़ा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए सीमंत संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, इस तरह यज्ञोपवीत धारण का संस्कार होता है। इस तरह एक बच्चे को 40 संस्कार हैं, इसे उसमें उनमें से 10 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं। जो कृष्ण भवन अमृत संघ में प्रभुपाद जी ने बताया कि माँ बाप को इस तरह जो बच्चे को पैदा किया है बच्चे को बचपन से लेकर भक्ति में उनके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी ने इसे प्रोत्साहन दिया उनको उनके बचपन से इसे। तो इस तरह जो बच्चे उत्पन्न होते हैं माँ बाप की मनोभावना के अनुसार बच्चे उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ लोग भक्ति में 40-50 के बाद भक्ति में आते हैं, लेकिन उसके पहले बच्चे हो गए ऑलरेडी उनके पहले से। अभी बच्चे बहुत उत्पात मचा रहे हैं घर में, माँ बाप बोलते हैं अरे हमारी बात सुन नहीं सुनते वो, कि वो बात नहीं सुनते क्योंकि वो जन्म लेने के पहले हमारा भी भावना उतना ठीक नहीं रहता उस टाइम, इसलिए वो ऐसे उत्पन्न हुए हैं। जब माता पिता का भावना ठीक नहीं है उस समय उत्पन्न हुए, वो बाद में माता पिता भक्त बन गए लेकिन अभी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उनको ऐसे। इसलिए जो माता पिता शादी करने के पहले भक्ति में आ जाते हैं लेकिन अभी भी शादी हुआ है बच्चे नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी है इसमें। इसलिए हमारे मनोभावना के अनुसार बच्चे उत्पन्न होता है। जैसे आपको मालूम है प्रियव्रत नाम का एक राजा था, वो नारद मुनि ब्रह्मचारी थे, उनके प्रचार से वो भी ब्रह्मचारी बन गया। गंधमादन पर्वत में जाकर बैठ कर ध्यान लगाकर परम पुरुष भगवान विष्णु की पदकमलों में भक्ति करके वो बहुत मुक्त होकर दिव्य भावना में स्थित हो गया वो प्रियव्रत राजा। लेकिन उस समय ऐसे एक समस्या हुई इस दुनिया में, स्वयंभू मनु वो उनका वायस बढ़ गया, उम्र बढ़ गया, उनको रिटायरमेंट लेना था उनको, लेकिन राजा कौन बनेगा? उत्थानापाद राजा था पहले, लेकिन उसके बाद ध्रुवा आई, उसके बाद अनेक लोग आकर चले गए, अभी कोई राजा नहीं था अभी बनने के लिए, तो राजा चाहिए था। तो उत्थानापाद एक बेटा था और दूसरा बेटा प्रियव्रत था, तो इसलिए प्रियव्रत को बुलाने के लिए स्वयंभू मनु गए, जाकर बुलाया, लेकिन वो बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं तो नारद मुनि के मार्गदर्शन में है, हमको संसार में नहीं पढ़ना है, इसे बोला उन्होंने। लेकिन उसके बाद स्वयं मनु ब्रह्मा के पास शिकायत करते हैं, ब्रह्मा जी खुद आ गए। ब्रह्मा जी आकर उनको, नारद मुनि को भी समझाया उन्होंने, प्रेमव्रत को समझाया कि दुनिया के जिम्मेदारी को करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम खुद के बारे में मत सोचो, दुनिया के कल्याण के बारे में सोचो, इसलिए तुम राजा बनो। तो बाद में मान लिया वो, राजा बना वो। लेकिन राजा बनकर विविध तरह के जन कल्याण के लिए काम किया उन्होंने, लेकिन करते करते थोड़ा आसक्त हो गया अपने जीवन में। उनकी धर्मपत्नी थी बरहिष्मती नाम का, वो इतना अति सुंदरी थी कि वो अग्निवलम करते समय आग भी उनसे मोहित हो गया, ऐसा बोला गया, अग्नि भी मोहित हो गया उनसे, अग्निदेवी भी, ऐसा बोला गया। तो ऐसे अति सुंदरी धर्मपत्नी से रूपवती बारिया शत्रु चाणक्य बोलते हैं, एक रूपवती पत्नी से कभी पति मोहित हो जाता है, तो वो भी कुछ क्षणों के लिए मोहित हुआ। उस समय एक बच्चा पैदा किया उसने, उसका नाम था अग्निधर। बाद में क्या हुआ, अग्निधर एक अप्सरा से आकर्षित होकर स्वर्गलोक चला गया। वो प्रियव्रत थे, शुद्ध भक्त, वो भगवत नाम लौटने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा स्वर्ग गया। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को ऐसे मनोगति होते समय पैदा किया जब इनका मनो, इनका मन की भावना शुद्ध नहीं था, इस तरह भागवत में बोला गया। इसलिए हम लोग भी कुछ भी कार्य चालू करते हैं उस समय हमारे मनोभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते समय संकल्प लेते हैं, आप लोगों ने देखा है, मैं पलान पलान ऐसे व्यक्ति हूँ, इस बस्ती में रहने वाला हूँ, और आज का ये महीने में और ये दिन में और इस मुहूर्त में मैं ऐसे एक संकल्प ले रहा हूँ करके लोग करते हैं, देखा ना आपने, मुहूर्त वगैरह देख कर करते हैं। इसका यही कारण है कि हम मुँह से संकल्प लेते हैं, चित्त में उस संकल्प के बारे में स्मरण करते हैं, और इस तरह करते हुए एक शुद्ध भावना के साथ हम कुछ भी सेवा करना है हम करते हैं, इस तरह करते हैं। तो इस तरह प्रियव्रत था अच्छा राजा, पहले वैराग्य भी था लेकिन थोड़े माया में पड़ गया था, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने संसार को अपनाया था, इसलिए ब्रह्मा के आशीर्वाद भी रहा उनके साथ, इसलिए वो माया से ऊपर उठकर वापस विरक्तवाना जागृत हो गया उसके अंदर। तो पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ से लेकर अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त किया उन्होंने ऐसे। इस तरह इधर भी बताया जा रहा है कि दिति के मन में इस तरह का उद्वेग का अनुभव हो रहा है कि मुझे भी बच्चे चाहिए, मैं दिखाना चाहती हूँ। इस दुनिया में दूसरों को इम्प्रेस करने की इच्छा बहुत होता है जीव के अंदर। उनके पास क्या कार है, मेरे बहन के परिवार के पास कार है और हमारे पास स्कूटर है, तुरंत एक पत्नी पकड़ेगी अपने पति को, बोलेगी देखो वो लोग कार खरीद लिया, हम लोगों के पास स्कूटर है। वो बोलेगा ठीक है, उनका नौकरी बड़ा है, हमारा नौकरी छोटा है, छोटा नौकरी इसलिए छोटा स्कूटर हमारा है, बड़ा नौकरी इसलिए बड़ा कार है उनका, तुलना मत करो। फिर भी कभी वो बोलेगी नहीं नहीं आप और दूसरा नौकरी ढूंढो, और बड़ा नौकरी, और पैसा लाओ। इस तरह दुनिया में लोग दूसरों को देखकर अपने जीवन में कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। कभी एक बहन का दो बेटी हुई, दूसरे बहन का दो बेटे हो गए, तो कोई स्त्री सोचते भगवान क्या कर रहे हैं अभी है? उनको दो बेटे देने के बदले मुझे एक बेटा दे सकते थे, और मेरे एक बेटे के बदले उसको एक बेटी दे देने का, दोनों का एकदम एक समान हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। इस तरह कभी कभी सोचते हैं, लेकिन भगवान को पता है किसको क्या देने का, उनको पता है, इसलिए भगवान ऐसे देते हैं। तो इस तरह से तुलना करने से क्या होता है, बहुत दुख होता है दुनिया में। ऐसा बोला जाता है कि एक बार एक बिल्ली को लगा कि मुझे भी टाइगर बनना है, बाघ बनना है। देखने में बिल्ली और बाघ देखने में एक समान दिखते हैं, लेकिन बाघ को देखेंगे तो हम भाग जाएंगे, है ना, बिल्ली हमको देखेंगे तो बिल्ली भाग जाएगा। लेकिन अगर बिल्ली नकल करना चाहता है बाघ को, क्या करेगा वो, एक चूल्हा से एक लकड़ी लेकर वो अपने शरीर में ऐसे एक लाइन रेखा मार सकता है, ऐसे मारने से वो बाघ नहीं बनता वो। इस तरह कुछ लोग दूसरों को देखकर नकल करना चाहते हैं, इससे इनके हृदय में जलन बढ़ता है इस दुनिया में, इसको लोभ बोलते हैं इस दुनिया में। इस तरह से दिति के चित्त में भी इसे लोभ भावना जागृत हुई, अगर एक स्त्री को बच्चा चाहिए गलत नहीं है। शादी करने के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं स्त्री के हृदय में पांच इच्छाएं होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये पति जो होता है वो जेंटलमैन होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह प्रेम से बात करने वाला होना चाहिए, और पति जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए जो पैसा लाएगा घर में, ऐसे होना चाहिए, और एक पति को अच्छा घर बांध कर देना चाहिए, और घर में कार और टेबल चेयर सब फर्नीचर से बरकर रहना चाहिए घर, काली काली नहीं रहना चाहिए घर, और बच्चे होना चाहिए बड़े करने के लिए, और अच्छा साड़ी कपड़े पहनने के लिए देना चाहिए, आभूषण ये सब देना चाहिए स्त्री को। अगर ये सब कोई पुरुष देगा तो वो अपने पत्नी का हृदय जीत लेगा वो, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। ऐसे इस पति का कर्तव्य है, तो ये सब अपेक्षा करना स्त्री का कुछ इसमें गलती नहीं है इसमें। तो इधर हम दीति के संबंध में पढ़ रहे हैं कि दीति की अपेक्षा जो था बच्चा चाहिए करके ये गलत नहीं था। गलती क्या था, गलत समय पर अपने पति को उन्होंने प्रेरित किया। आगे बता रहे हैं कि यू टेल 11th वर्स ट्रांसलेशन 11वां।
अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे।
और आगे और एक श्लोक पढ़ लीजिए।
एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही है।
हाँ, बोल रहे कि आप प्रजापति हैं, इसलिए प्रजा उत्पन्न करना आपका काम है, इसलिए आप प्रजा देने के लिए सक्षम हैं और ये आपका कर्तव्य है, इस तरह वो समझा रही है। आगे 13वें श्लोक में बता रही है कि मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति ने हम सब बच्चियों को पूछा था, उन्होंने किसके साथ शादी करना चाहते हो, तो हमको अनुमति दिया था उन्होंने चुनने के लिए और मैंने आपको चुना, ऐसे बताती है वो। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 13वें श्लोक के तात्पर्य में कि उन दिनों में भी लड़कियां जो थी अगर वो चुनना चाहती थी पति को उसके लिए मना नहीं था, लेकिन किसी भी पुरुष के साथ इधर उधर घूमना गामना उसके लिए मना था, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। उदाहरण के लिए देवहूति ने चुना था किसको, कर्दमुनि को। आजकल के जमाने में अगर कोई देवहूति जैसे कोई सारे दुनिया के राजा का बेटी अगर कोई एक साधारण पुरुष जो गरीब पुरुष को चुनेगी तो कौन है पिता उसको शादी करवाएंगे ऐसे है। लेकिन कर्दमुनि रहते थे जंगल में, लेकिन माता पिता दोनों बेटी को लेकर गए जंगल उनके साथ बातचीत करने के लिए ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस जमाने में अगर किसी लड़की को चुनना हो अपने पति, वो अपने दादी के पास जाकर बोलती थी, वो अपने पिता के माता के पास जाकर बोलती थी वो। तो वो पिता के माता वो तो बुद्धिमान होती, वो क्या करते हैं एक स्त्री की कुंडली देखेगी, उस लड़का का कुंडली देखेगी, अगर मैच नहीं होता तो बोल देगी बच्ची को, ऐ भूल जाओ उसको, मैच नहीं हो रहा है, जीवन भर दुखित होगी तुम, इस तरह। अगर मैच होता है तो बोलेगी तुम चिंता मत करो शादी में सेटल कर दूंगी, तो अपने बेटे को बोलेगी बेटा सेटल कर दो इसके साथ, तो बेटा बोलेगा माँ ने बोला करके वो भी सेटल कर देगा, उसको पता भी नहीं कि मेरी बेटी ने उनके साथ बातचीत किया ऐसे। इस तरह उस जमाने में ये सब एकदम ठीक ठाक होता था ऐसे। तो इस तरह प्रभु जी बोलते हैं कि एक पति को चुनने के लिए अनुमति है एक बच्ची को, लेकिन निर्णय लेना माता पिता को छोड़ा है, इस तरह बताते हैं। और 14वें श्लोक में वही बोल रही है कि मेरे पिताजी ने आपको 13 लड़कियों को आपको शादी में दिया और हम सब लोग आपको अच्छी तरह हमने सेवा दी है आपको, इस तरह है। इधर प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं 14वां श्लोक के तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य 14वां श्लोक।
तात्पर्य, सामान्यतः कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में संकोचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से यथा दादी के माध्यम से जिसके जिसके साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती थी स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह तेराहों को कश्यप को प्रदान कर दिया। दिति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतएव वह संतानहीन क्यों बनी रही, जबकि वह संतानहीन क्यों बने रहे जब तक वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी।
उसके बहनों को कश्यप ने पुत्र दिया है, लेकिन उसको नहीं दिया दिति को। इसलिए दिति ने तुलना करके देखा कि सब लोग सोचेंगे कि मैं बंजर स्त्री हूँ, मुझे बच्चा नहीं है, इस तरह सोचेंगे। इस तरह सोचकर इसलिए आकर कश्यप से इसे विनती कर रही है। 15वां अनुवाद पढ़िए।
हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए।
तो सलामा।
हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसीलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया।
हाँ, तो वो तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य, पढ़िए तात्पर्य।
तात्पर्य, जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होता है तो इसे पाप पूर्ण कलमश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते जो इस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्मसंयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे अतएव उन्होंने केवल सांतावना प्रदर्श शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया।
हाँ, इधर एक महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर कि एक तुलना किया जा रहा है विदुर जी और कश्यप के बीच में। विदुर जी के नाम को वीर बोलते हैं, इतिमाम वीर अमारी चह, उस श्लोक में 16वें श्लोक में। लेकिन विदुर जी वीर थे लेकिन कश्यप कमजोर थे, इस तरह बताते हैं। और कमजोरी क्या है, क्योंकि वो इम्पर्सनलिस्ट थे, ब्रह्मवादी थे वो। लेकिन भगवान की भक्ति में नाम रूप गुण लीला इत्यादि को सुनकर भगवत प्रेम जो जागृत होता है, ऐसे पुरुष वो दृढ़ माना जाता है इसे। हाँ, दृढ़ भक्ति में जुड़ा हुआ मनुष्य होता है ऐसे पुरुष। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते हैं, जैसे विश्वामित्र भी ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते थे, इसलिए उनका पतन हुआ मेनका के द्वारा ऐसे। इस तरह पापा जी बोलते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति में उतना रस नहीं है, सिर्फ शांति है उधर। लेकिन जो भक्ति भावना में जुड़ते हैं उनको इतना रस प्राप्त होता है कि उस रस के कारण वो निम्न इच्छाओं से वो परे हो सकते हैं, इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं। वो एक चीज़ बताया है। दूसरा चीज़ बोला उन्होंने, अगर कोई हमको गलती करने के लिए पाबंदी करते हैं, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इधर बताते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला गया है, अगर कश्यप एक क्रूर आंखों से देखते थे और बोलते थे कि तुम जो करने के लिए जा रही हो ये बड़ा गलती है, ये पाप है, ये भगवत इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए तुमको मना करना चाहिए, इस तरह मना करने के लिए अगर उनके अंदर शक्ति था तो कर सकते थे, लेकिन वो खुद, उनके अंदर शक्ति नहीं था, वो खुद भी कमज़ोर थे। इसलिए ये घर में देखा जाता है कभी पति पत्नी में, या तो पत्नी बहुत गंभीर है भक्ति में, पति थोड़ा ढीला डाला है, नहीं तो पति बड़ा गंभीर है भक्ति में, पत्नी थोड़ा ढीला डाला है। अगर भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि हर घर में कम से कम एक सदस्य थोड़े गंभीर होते हैं भक्ति में, इसके कारण आप देखेंगे दूसरे लोगों को भी भक्ति का प्रभाव पड़ता है उस घर में। ऐसे अगर सब लोग डेले डाले हैं तो सब लोग गड्ढे में जाते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्ति में आने के पहले रविवार के दिन किसी भी घर में जाकर देखो, लोग उठते हैं 8 बजे 9 बजे और चाय पीते हैं और न्यूज़पेपर के साथ कुछ सप्लीमेंट भी आता है उसका भी पढ़ते हैं, उसके बाद 10 बजे कुछ मूवी देखते हैं 10 से 1 बजे तक। कुछ कुछ लोग नहाते भी नहीं हैं, बहुत लेट नहाते हैं, ऐसे खाना पीना सोना भोगना घर में इस तरह से बिताते हैं लोग हैं। तो बेड काफ़ी बोलते हैं ना, 8 बजे बेड काफ़ी है। तो इस तरह कर्मी जीवन है देखा जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद रविवार जो हॉलीडे होता है उसको होलीडे कर देना चाहिए, हॉलीडे को होलीडे। होलीडे का मतलब है मंदिर में आना, भगवान के दर्शन करना, सुबह मंगलारती में आना, क्लास सुनना, भागवत का सत्रों को सुनना, भक्तों के साथ संग करना, सेवा में भाग लेना, है ना, इस तरह। तो इस तरह अगर कोई भक्ति में कमज़ोर है तो उसके अंदर उत्साह नहीं है भक्तिमय कार्य करने के लिए, हाँ कमज़ोर है तो, लेकिन भौतिक कार्यों को करने में उत्साह है उसको, हाँ जैसे आसक्ति भोग इत्यादि में उत्साह है। ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, उत्साह है गलत दिशा में, करेक्ट है ना। हमारे से भी ज़्यादा वो लोग परिश्रम कर रहे हैं, हाँ? आप देख सकते हैं अभी बम्बई में ट्रेन जो जाता है कितने लोग वो भीड़ भाड़ में कैसे कैसे जाते हैं वो लोग। आप दादर जाकर देखिए, हाथ में सूट केस लेते हुए लोग भाग रहे हैं। हम लोग पुणे के लोग जाते हैं तो थोड़ा धीमी से जाते हैं, पुणे के लोग, मुंबई के लोग इतना भागते हैं, भागो दौड़ो भागो दौड़ो ऐसे हैं। तो वो भी लोग परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम किस लिए, इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि यतंतश्च दृढ़व्रताः, मेरे भक्त मेरे लिए परिश्रम करते हैं, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो कश्यप, ये दिति गलत दिशा में जा रही थी और कश्यप भी कमज़ोर थे, इसलिए दोनों का पतन होता है। तो एक गृहस्थ के लिए क्या पतन माना जाता है, अगर कोई गृहस्थ अपने भक्तिमय कार्यों को छोड़कर भूलकर अगर माया में पड़ जाते हैं, जैसे एक भक्त आए थे हमारे मंदिर में, बोला कि हमको वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारना है। हमने बोला मंदिर में रह कर देखिए 3 महीने के लिए कैसा लगता है आपको, तो 3 दिन रहे उसके बाद गायब हो गए। अरे पता नहीं किधर गए। वो बोले कि हमारे रिश्तेदार का कुछ शादी है दूसरे शहर में, हम जाकर आ जाते हैं। ठीक है, जाकर आ गए तो और 2 दिन रहे और 1 हफ्ते के लिए नहीं मिले। अभी क्या हो गया है, हमारी बेटी का एक बेटा हुआ है अभी, वो लोगों ने घर में बुलाया, नामकरण करने वाले हैं, गए थे। अरे इस तरह 2 महीने के बाद देखा वो गायब हो गए 2 साल के लिए, आया ही नहीं। तो 2 साल के बाद आए, मैंने पूछा क्या हो गया है? वो बोले कि प्रभु जी इधर रह कर उधर जाओ उधर जाओ, ऐसे जाने के पहले अच्छा मैंने सोचा घर में ही रहो, घर में रहते इधर जाओ उधर जाओ, इतना सोशल, इसको सोशल ऑब्लिगेशन बोलते हैं उसको, है इतने सोशल। आप किसी का बर्थडे आ गया, किसी का शादी का एनिवर्सरी हो गया, किसी का बेटे का शादी है। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं मरने के पहले बेटी का शादी देख लूँगा तो अच्छा होगा, अगर बेटी का भी देख लिया बेटे का भी देख लिया, अभी बोल रहे हैं एक बच्चा हो जाएगा उनका, उसको देखकर मैं मर जाऊँगा, बस अंतिम सांस ले लूँगा। ठीक है, उनका बेटा हो गया उनका बेटी हो गया, अभी वो बेटा बेटी बड़े हो गए, अभी 10वीं कक्षा तक आ गए, तभी इसका 80 से ज़्यादा हो गया उम्र, तभी क्या बोलता है, अगर वो भी शादी होकर सेटल हो जाएगा ना, बस और कुछ नहीं करना हमको, अभी बेटे का बेटी का शादी देखने की इच्छा है, उसके बाद उनके भी बच्चा होगा उसके लिए वेट करो। तो इस तरह इस दुनिया में, इस संसार में भौतिक जिम्मेदारियों को पूर्ति करते 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 इंसान पूरा डूब जाता है उसमें, भगवान के भगवत कैंकर्यों को भूल जाता है वो, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करता है व्यक्ति। ऑफिस में जाओ बॉस चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद भी सलाम मारकर उसको काम करता है उसके पास, जैसे कभी कभी कुत्ता पूंछ हिलाकर मालिक की सेवा करता है, इस तरह लोग भौतिक जीवन में कठोर परिश्रम कर रहे हैं लोग इस तरह। तो वो जिस तरह उसमें उत्साही है, इस तरह धार्मिक लोगों को धर्म के कार्यों को करने में उत्साही होना चाहिए। तो इधर क्या हो गया, दोनों कमज़ोर हैं, ये दिति भी कमज़ोर हैं और कश्यप भी कमज़ोर हैं, इसलिए जब दिति ने ऐसे याचना की अभी कश्यप कमजोर होकर कैसे बातचीत कर रहे हैं वो आगे के श्लोकों में आता है। बोलिए ये 17वां श्लोक है। ये शते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याह कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रय वर्ग की यतः।
हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है।
हाँ, देखिए प्रभुपाद जी इधर एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि कश्यप अपने धर्म पत्नी की प्रशंसा कर रहा है। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़िए, नेक्स्ट वन 18वां, और एक पढ़ लेते हैं।
जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भव सागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है।
भयावह स्थिति क्या है इस दुनिया में? प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हम लोग शुद्ध नहीं हुआ हमारा चित्त, तरुण अवस्था में आते समय एक व्यक्ति के हृदय में काम वासना जागृत होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री पुरुष का शादी जल्दी करते थे। प्रभुपाद जी की बहन भवतारिणी, उनका 12 साल हो गया था, तो उनके माता चिल्लाने लगे अपने पति को, हमारी बेटी का 12 साल हो गया है, अभी तक शादी करके सेटल नहीं किया आपने, अगर 1 साल और बढ़ जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसे बोलते थे वो। क्योंकि सही उम्र पर कर देना चाहिए शादी, लेकिन क्यों जल्दी शादी करते थे उन दिनों में? अगर एक लड़की को 10-11 उम्र है, शादी कर दिया जाए तो उस पुरुष को वो अपने हृदय में धारण कर लेती है, सोचते कि यह मेरा पति है। तुरंत वो लोग साथ में नहीं रहते हैं, वो पुरुष अपने घर में चला जाता है, क्योंकि वो भी जाकर स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी मालूम है कि अरे हमारा शादी हो गया अभी, इसलिए हमको काम धंधा करके अच्छा नौकरी भी हासिल करना होगा, हैं, क्योंकि वो स्त्री के घर वाले पूछेंगे, हैं, क्या कर रहे हो तुम, पूछेंगे ना, मान सम्मान की बात है, हैं, इसलिए वो भी जाकर पढ़ाई करेगा। जब एक स्त्री सही वायस पर आ जाती है, जैसे 16-18 वायस पर, जब बच्चे पैदा करने के लिए योग्य हो जाती है, उस समय पति पत्नी को साथ में लाते थे, हैं? और उस समय तक क्या करते थे, 11 से 18 तक सिर्फ साल में एक बार लड़का जाता था अपने माता पिता के साथ उनके स्त्री के घर में, वो देख सकता था और वो कुकिंग करती थी उनको, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं था संबंध। लेकिन 18 के बाद साथ में आते हैं तो पति पत्नी के मन में, दोनों के मन में फिक्स हो जाता है कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, इसलिए कुछ गलत करने की संभावना नहीं है। लेकिन जब वायस पर आ जाती है स्त्री, हमारे शरीर में अनेक हार्मोन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, संप्रेरक बोलते हैं उसको, संप्रेरक जानते हैं आप लोग, संप्रेरक क्या है, हार्मोन ये शरीर में कुछ द्रव उत्पन्न होते हैं शरीर में, पुरुष के भी और स्त्री के भी। वो सही उम्र पर जब शादी होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, 2-4 बच्चे पैदा हो गया, बस शांत हो जाते हैं। उसके बाद अभी बच्चे, अब माता पिता दोनों को ध्यान बच्चे के ऊपर चला जाता है, आप देख सकते हैं पहले एक दूसरे की ओर आकर्षण होता है, बच्चे होने के बाद पूरा ध्यान किधर जाता है, बच्चों की ओर जाता है, और बच्चे को बड़ा करो, बच्चों को अच्छी चीज सिखाओ, इस तरह मंदिर में जाते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं, साधु महात्माओं के आशीर्वाद चाहिए, भगवान की दर्शन चाहिए बच्चे को, इस तरह ध्यान उधर चला जाता है। तो इसके कारण पति पत्नी दोनों, उनकी जो वेग होता है वो शांत हो जाता है 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद, धीरे धीरे वो परिपक्व हो जाते हैं इसे। लेकिन आजकल के ज़माने में विद्यार्थी लोग हैं, 32 तक शादी नहीं होता उनका, 32-33 तक, अरे उसके पहले सब गड़बड़ कर देते हैं स्त्री पुरुष दोनों ऐसे, क्योंकि जब वायस पर आते हैं उनके अंदर जो हार्मोन सेक्रेट होता है, उस समय पर जब या तो कोई ब्रह्मचारी व्रत को पालन करते हुए, उसको बृहद व्रत बोलते हैं, बृहद व्रत का मतलब है गुरु की वाणी एक रस्सी के बराबर है जो शिष्य को बांधता है, गुरु के आदेश अनुसार जीवन बिताने वाला शिष्य अपने काम वासनाओं से ऊपर उठकर भगवत चिंतन में डूबकर प्रेमा भक्ति को जागृत कर सकता है। वो प्रेमावेश में आकर उसमें डूबकर जब रहता है, वो ब्रह्मचारी रह सकता है जीवन भर, ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसे लोग रह सकते हैं ऐसे। और जो लोग उनको भक्ति भी करने की इच्छा है, साथ साथ शादीवादी करने की इच्छा है, तो उनको सही उम्र पर शादी होना चाहिए ऐसे। इसलिए इधर बताते हैं कि भयावह स्थिति क्या है, अगर किसी के अंदर काम वो काम वासना उत्पन्न होता है लेकिन वो शादी नहीं हुआ है तो वो कहीं वेश्यागमन करेगा जिसके कारण उसके शरीर में व्याधि बढ़ेगा, नहीं तो पतित हो जाएगा, पतदलित हो जाएगा अपने जीवन में। इस तरह एक स्त्री भी अगर उसके पिताजी शादी नहीं कराते हैं, उसको 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, सोचते हैं कि मेरे पिताजी मेरे सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं मुझे, अगर 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरा उम्र, कोई नहीं शादी करेगा, और मैं थोड़ा मोटी हो जाऊंगी तो कोई भी नहीं देखेगा मुझे, अभी मैं जब तरुणी अवस्था में हूँ उसमें शादी होना चाहिए मुझे। इस तरह स्त्री सोचते है कि पिताजी नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं खुद ही चुन लूंगी, इस तरह वो खुद ही चुनने की प्रयत्न करती है, और खुद चुनने में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, कोई पर कोई पुरुष आकर उसको वीर्य दे देता है, वो भाग जाता है, वो इसके कारण वो दूषित हो जाती है। जो माताओं की योनि शुद्ध है उसमें ऐसे बच्चे महात्मा पुरुष पैदा होते हैं, उसमें अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। जो माता के योनि दूषित हो गया है किसी पर पुरुष से और उसके बाद शादी होता है तो शक्तिशाली ऐसे बच्चों को पैदा नहीं कर पाएगी वो। इसलिए जैसे शिवाजी महाराज ऐसे महान लोगों को पैदा करने के लिए योनि माता का योनि पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पवित्र मतलब है पतिव्रता, पतिव्रतता होना चाहिए। इसलिए इधर बताते हैं स्त्री को ट्रेनिंग मिलना चाहिए उसके माता पिता से, कि ऐसे कुछ लड़कियां हैं अपने माता पिता को बोले बिना कुछ नहीं करेगी वो, कोई भी पुरुषों के साथ संग नहीं करेगी वो ऐसे। इस तरह पुरुषों को ब्रह्मचारी व्रत का ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। इस तरह दोनों को जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला है, वो मिलने के बाद जब शादी होता है, ऐसे घरों में बहुत पवित्र बच्चे पैदा होते हैं ऐसे। साथ साथ और एक विषय बता रहे हैं प्रभुपाद जी इधर, एक स्त्री को तुलना किया गया है एक किला से। किला जानते हैं आप लोग, दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं उसको, किला ही बोलते हैं ना, किला। किला का मतलब फोर्ट, फोर्ट क्यों फोर्ट है, अगर एक राजा एक बड़े प्लेग्राउंड के बीच में रहेगा वो अकेले तो कोई भी उसको गोली मार देंगे उसको, है ना, आसानी से उसको पराजित कर देंगे कोई भी। लेकिन एक राजा अपने किला के अंदर रहेगा, अपने उनके साथ सब सैनिक भी हैं, मिनिस्टर लोग हैं, सब लोग हैं। किला आपने देखा होगा शिवाजी महाराज का, इन लोगों का बड़ा किला देखा ना आपने। किला क्यों बनाता है राजा, क्योंकि किला के अंदर सब आयुध है, अंदर बैठा कोई दुश्मन ऊपर आएगा तो उसको उड़ा देंगे आसानी से। जिस तरह किला एक राजा को बचाता है, इस तरह एक धर्मपत्नी एक पुरुष को बचाती है, बोलते हैं। कैसे बचाती है, अगर एक पुरुष के अंदर वासनाएं उत्पन्न होते हैं तो वो अपने पत्नी को छोड़कर किसी परस्त्री को देखना नहीं चाहिए, इससे अपने पत्नी के साथ पारिवारिक जीवन में के अंदर रहकर एक भक्त वो अधर्मिक पथ पर नहीं चलता है, इसलिए वो सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह बताते हैं और एक उदाहरण देते हैं, पत्नी का उदाहरण देते हैं कि पत्नी एक नाव से तुलना किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक समुद्र के बीच में गिर गया हो, तड़प रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसको एक नाव मिल गया तो नाव के अंदर बैठकर वो पार कर पाएगा, इस सागर को पार करके किनारे में पहुंच जाएगा। इस तरह एक धर्म पत्नी को अपनाने से धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि प्राप्त हो जाता है पुरुष को। और इस तरह पुरुष एक पारिवारिक जीवन में जिम्मेदार बनकर रहता है। देखिए इस जमाने के पहले के जनरेशन जो है, जिसमें आप देखेंगे वो पति पत्नियां लगभग 70-80 उम्र के होते हैं ना, उनके परिवार में लोग बहुत जिम्मेदार रहे, है कि नहीं है? लेकिन आधुनिक इंसान उतना जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ मैं हैदराबाद से, हैदराबाद में इन्फोसिस कंपनी है, 15,000 एम्प्लॉई हैं एक ही स्थान में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उधर। उधर एक भक्त दिखा रहे थे मुझे, देखे ये सब बिल्डिंग्स में गृहस्थ लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, वो बिल्डिंग्स में वो बोले कि उधर पुरुष लोग रहते हैं, बोला उन्होंने। और एक बिल्डिंग दिखा इधर स्त्री लोग रहती हैं, लड़कियों का हॉस्टल है। और एक बिल्डिंग दिखा उधर स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, बोला उन्होंने। और उस बिल्डिंग में बहुत आत्महत्या हुआ है, लोगों ने आत्महत्या किया है, शूटिंग हुआ है, प्रॉब्लम्स हुआ है, इसे मारामारी हुआ है इसे वो बिल्डिंग में, लेकिन बाकी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं। पुरुषों के बिल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है, स्त्रियों के बिल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है, शादी किए हुए लोगों के बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी किए बिना जो रहते हैं साथ में उधर प्रॉब्लम है। और वो अभी वही लोग पूछ रहे हैं कंपनी के लोग, क्यों इधर इतना मारामारी हो रहा है, इतना शूटिंग हो रहा है, या तो कोई दूसरों को मार रहा है, नहीं तो खुद ही आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि धर्म को छोड़कर इंसान गलत दिशा में जाएगा तो इस तरह समस्याएं खड़े हो जाते हैं। तो आजकल के जमाने में पुरुष स्त्री सोचते हैं कि अरे कौन पूछ सकता है हमको, अरे कौन देख रहा है, किसने देखा है भगवान को, अगर हम कुछ भी करेंगे तो माता पिता भी वर्ण संकर को पैदा करती हैं। और माता पिता बोलते हैं बेटे को जाओ कमा कर आओ, कुछ भी करना करो, कहीं भी घूमो, किसी के साथ भी घूमो, नो प्रॉब्लम है, जब तक पैसा लाओगे अच्छा है। तो इस तरह की जमाना बदल गया है। अगर कोई बेटा जा रहा है कंपनी में, माता पूछती है कि बेटा रात को लेट हो जाता है 12 बजे तक, क्यों इतना लेट आते हो? वो बेटा बोलता है कि रात में थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, मुझे और साल में 4 लाख और मिलता है। तो माता बोलती बहुत अच्छा बेटा, और 1 घंटा देरी से आओ, जब तक पैसा लाती हो बस। लेकिन सुबह उठता है वो 8 बजे, वो माला नहीं करता है, भगवान के सामने नहीं आता, कुछ पूछते नहीं है माता। और माता बोलती है बेटा और 1 घंटा सो जाओ बेटा, क्योंकि पैसा लाता है ना तुम अच्छी तरह। तो इस तरह चस्का लग गया लोगों को पैसे का है? तो पैसा मिल गया तो सब मिल गया उनको, ऐसे सोचते हैं लोग। इसलिए इधर बता रहे हैं कि एक धार्मिक पुरुष और धार्मिक स्त्री जब साथ में आते हैं वो एक दूसरे को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें से क्या लाभ है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। अगर स्त्री ऐसे एक धार्मिक परिवार से जन्मी हो लेकिन अभी उसके अंदर काम वासना उठ रहा है, नहीं तो ईर्ष्या भावना जैसे उठ रहा है दिति के मन में, तभी कश्यप उसको बोल सकते थे कि चुप रहो, अभी शाम के समय पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, रात के समय संभोग करके बच्चे पैदा करना चाहिए, ये शास्त्रीय विधि है। तो अगर वो ऐसे बोलते थे तो कोई पूछ सकता था उनको, हे अगर तुम ऐसे बोलोगे तो स्त्री किसी परपुरुष के पास चली जाएगी, परपुरुष के पास नहीं जाएगी वो, क्यों? क्योंकि वो धार्मिक परिवार से है, इसलिए परपुरुष के पास नहीं जाएगी वो, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिला है माता से। ठीक है, अगर स्त्री इस तरह बोल रही है लेकिन अगर पुरुष के अंदर वेग काम वासना कामुक वासना होता है तो वो क्या कर रहा है, वो भी गलत चीज नहीं करेगा, क्योंकि उसके गुरु से ट्रेनिंग मिला है उसको। इस तरह स्त्री पुरुष जब साथ में आते हैं, दोनों धार्मिक होते हैं, वही परिवार यशस्वी परिवार बनता है, इस तरह प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो इस तरह पति पत्नी जब साथ में आकर उनके जीवन में, या तो शुरुआत में क्या होता है हमारे संस्था में पति पत्नी का शादी होता है, कभी कभी पति एकदम फैनाटिक होता है, फैनाटिक का मतलब क्या है, संकीर्णवादी होता है। तो वो सोचता है कि अगर पत्नी के साथ में भोग करूंगा तो मैं माया में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा करके एकदम वैरागी होता है, इसके कारण परिवार में समस्या होता है। क्योंकि पत्नी सोचती है कि ये क्या है, अगर इस तरह वैरागी रहना तो शादी क्यों किया इसने, इस तरह लोग सोचते हैं। तो बाकी लोग सोचते हैं नहीं नहीं हमको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, पहले हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर में सब व्यवस्था करना है, पहले थोड़ा प्रैक्टिकल व्यवस्था कर लेते हैं, बाद में भक्ति तो पड़ा है, बाद में भी कर सकते हैं भक्ति, गुरुजी किधर जाने वाला है, इधर ही है गुरुजी, हैं भगवान का मंदिर भी वृंदावन चंद्र भागने वाले नहीं है, इधर ही है वृंदावन चंद्र है, घर भी लिया है निकट जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा भौतिक जीवन को ठीक करो। तो वो लोग भौतिक जीवन में इतना डूब जाते हैं भक्ति में आ ही नहीं पाते हैं वो लोग है। ये हो जाता है दुनिया में, एक व्यक्ति है जो भौतिक जीवन में डूब जाता है, दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन करके इतना गंभीर बनता है कि पत्नी नाखुश, माता पिता नाखुश, घर में गड़बड़, बच्चे गड़बड़ ये कर रहे हैं। तो इस तरह व्यक्ति को दोनों का संतुलन रखना चाहिए, भौतिक आध्यात्मिक का संतुलन रखना चाहिए। जैसे अगर आपको पुणे से मुंबई जाओ, लोनावाला में अगर आपको चिक्की खरीदना हो तो आप उतर गए चिक्की देखने के लिए, अगर 4-5 चिक्की का वैरायटी देखा तो ट्रेन निकल गाड़ी निकल जाता है। इस तरह इस्कान को छोड़कर कुछ लोग भौतिक जीवन में सेटलमेंट करने के लिए गए, फंस गए उधर, इस्कान का गाड़ी तो ट्रेन जैसा चला जाता है आगे, है ना। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर रहोगे गाड़ी के अंदर, कभी कभी घर वालों के लिए भी जिम्मेदारी निभाना होता है, घर वाले बोलेंगे कि जाओ कुछ धंधा करो, लापरवाही मत करो, पैसा इकट्ठा करके लेके आओ, घर को चलाओ, तो वो भी जिम्मेदारी उनको भी निभाना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्यूटी, वर्टिकल ड्यूटी बोलते हैं, भौतिक जिम्मेदारियों को हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? एक नाम मैंने सुना है एक प्रवचन में, वर्टिकल को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतिज, चैतिज, चतिज, सब लोग जानते हैं चतिज। तो हमारे भौतिक कर्तव्य क्या है? चतिज है। और आध्यात्मिक क्या है? हाँ, अगर आप सिर्फ ये ही करते रहेंगे तो क्या रहेंगे? इधर ही रहेंगे दुनिया में, ऊपर उठने वाले नहीं हैं हम। अगर हम ये करेंगे तो ऊपर उठेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरा नहीं होगा, सब चिल्लाएंगे आपके ऊपर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये जिम्मेदारी करना चाहिए और सारे परिवार को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाकर लेके जाना चाहिए, ऐसे 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 उठाकर उनको भी लेके जाना चाहिए साथ में। इस तरह शास्त्र बताते हैं, जिस तरह वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है जो भौतिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ पत्नी बच्चे सबको ऊपर उठाकर वैकुंठ लेके जाता है ऐसे। तो इस तरह, इसलिए हमारे तुकाराम की पत्नी चिल्लाती थी ना वो, है ना, उनको है इसलिए चिल्लाती थी वो, क्योंकि वो भौतिक जिम्मेदारी वो निभा नहीं पा रहे थे, क्योंकि भक्ति में ज़्यादा ये कर रहे थे। लेकिन हमारे में कोई तुकाराम नहीं है, इसलिए हमको हमको भौतिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए, साथ साथ भक्ति में ऊपर भी उठना चाहिए। हर जन्म में आप भक्ति जितना आगे बढ़ते हो वो कभी ख़त्म नहीं होता वो, अगर आप इधर तक आगे तो उधर ही अगले जन्म में इधर से शुरू करेंगे आप, इस तरह ऊपर उठते जाना चाहिए। इस तरह सुरक्षा की बात जो चल रहा है, दो तरीके के सुरक्षा है, एक है आध्यात्मिक, एक है भौतिक। भौतिक तरीके से पति पत्नी के अंदर काम वासना उठता है तो परिवार के अंदर ही उसको पूर्ति करना चाहिए, परिवार के बाहर नहीं जाना चाहिए, एक बात शास्त्र बताते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में सुरक्षा का मतलब क्या है? पत्नी पति दोनों को भक्तिमय जीवन में रुचि दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और माता पिता सुरक्षित रहेंगे, बच्चे तो उनके अनुगामी बनेंगे, अच्छी तरह पालन करेंगे उनके। इस तरह नाव और किला उदाहरण से वो बताते हैं। तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि पत्नी एकदम गंभीर है भक्ति में, लेकिन पति उतना गंभीर नहीं है। वो अभी तक एक माला भी शुरू नहीं किया, लेकिन पत्नी करती है 16 माला। तो ऐसे परिस्थितियों में देखा जाता है कि परिवार में एक व्यक्ति को ज़्यादा भौतिक रुचि है, दूसरे को ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि है। शास्त्र बोलते हैं कि शादी के पहले देखना चाहिए यथा रुचि यथा मति, दो चीज़ देखना चाहिए, दोनों का रुचि देखना चाहिए, दोनों का आध्यात्मिक में। अगर कोई एक माला करने वाला है, हम उनको ऐसे एक स्त्री के साथ शादी में देते हैं जो एक माला करने वाली है, कोई 16 माला करने वाला है 16 माला के साथ, कोई दीक्षित है दीक्षित, क्यों? क्योंकि स्तर बराबर होना चाहिए। जैसे गौरी और शिव, हाँ गौरी कौन है? पार्वती, उनको भी आध्यात्मिक रुचि है, प्रश्न पूछती रहती है और शिव जी प्रवचन देते रहते हैं, दोनों का अच्छा मैच हो गया। अगर पति है प्रवचन देने के लिए तैयार है, पत्नी है टेलीविजन देखना चाहती है, है ना, नहीं तो पत्नी है ना वो हमेशा भक्ति में सेवा में उसका रुचि है, लेकिन पति को रुचि नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है ऐसे। फिर भी अगर किसी का पहले से शादी हो गया, अभी शादी के बाद पता चला कि उनका रुचि अलग अलग है, तो क्या करना चाहिए? तो दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में ऊपर है, पति इतना नीचे है, तो पत्नी अगर इधर पत्नी है इधर पति है, तो पत्नी को थोड़ा नीचे आना चाहिए अपने स्टैंडर्ड्स में, और पति को थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए, और पत्नी को कंडीशन डालना चाहिए पति को, वो बोलना चाहिए कि आप 8 माला करो, हम यूरोपियन टूर में आएंगे आपके साथ, इस तरह कंडीशन डालना चाहिए। इस तरह पत्नी को क्या करना चाहिए? थोड़ा स्टैंडर्ड काम करके पति को ऊपर उठाना चाहिए ऐसे। इस तरह अगर पति ऊपर हो तो पत्नी को कैसे ऊपर उठाने का उनको मालूम होना चाहिए। इसके लिए बैलेंस, संतुलन रखना चाहिए भौतिक आध्यात्मिक जीवन में। जैसे जब किसी के रिश्तेदार आते हैं इधर पुणे में आते हैं इधर उनके रिश्ते को मिलने के लिए, वो लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर को देखने के लिए आते हैं, उनको बाहर भी घूमने की इच्छा होता है, स्नेक पार्क में जाओ, सारस बाग में जाओ, हैं कुछ सिनेमा भी देखो, साथ साथ मंदिर भी जाओ, करेक्ट है ना? भौतिक आध्यात्मिक का मिश्रण होता है ऐसे लोगों के जीवन में, तो हमको भी उनको समझ कर करना चाहिए ऐसे। जैसे अगर किसी के दादाजी आपके घर में आए हैं, उनको काफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, तो हम बोलेंगे उनको हम चाय नहीं पीते, हम काफ़ी नहीं पीते, वो बोलेंगे अरे ठीक है तुम नहीं पियो लेकिन मुझे दो, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है उनको दुकान में जाकर उनको बिठाया जाए, ठीक है आप पीजिए चाय पीजिए काफ़ी पीजिए, नो प्रॉब्लम, हम मना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। हम बोलेंगे हमारे घर में हम दूध पीते हैं, आपको दूध ही पीना पड़ेगा, आपको बोल नहीं पाएंगे ना हम। वो बोलेंगे अरे उनके घर में कभी आगे नहीं जाऊंगा, बोलेंगे ना ऐसे। इस तरह एक व्यक्ति को बुद्धिमता के साथ दोनों को जोड़कर साथ में लेके जाना चाहिए आगे। हैं इस तरह ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस प्रभुपाद जी बोलते हैं। एक लड़की का ट्रेनिंग माता से मिलना चाहिए। क्या ट्रेनिंग? किचन में कैसे कुकिंग करने का। आजकल के अनेक स्त्रियों को मालूम नहीं होता कि कुकिंग कैसे करना है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कभी कभी कंपनी में जाते हैं, तो ट्रेनिंग नहीं मिला है माता पिता से। इसके कारण मालूम नहीं होता कैसे एक रंगोली बनाना, कैसे कुकिंग करना, कैसे कसरत करना, परिश्रम करना। तो स्त्री के लिए क्या अलंकार माना गया है, स्त्री को क्या शोभा देता है। जब एक स्त्री सेवारत होती है, सेवा करने में बहुत सुखी रहती है, सेवा में ऐसे पति की, बच्चों की, सास ससुर की, भाग दौड़ करने में और घर को एकदम साफ सुथरा रखने में, सबके कपड़ा धोकर साफ सुथरा रखना और भगवान के पुजारियों को अलंकार करना, इस तरह स्त्री जब करती है उसको गृह लक्ष्मी बोला गया शास्त्र में। और उसके साथ साथ पतिव्रता होने का भी योग्यता माता पिता सिखाते हैं बच्ची को। तो इसलिए जो बच्चियों को अच्छा ट्रेनिंग मिला है वो किसी भी पुरुष को निकट आने नहीं देगी। वो कोई पुरुष निकट फोन कर रहा है तो माता को दे देगी फोन, कोई लापरवाही, कोई बुला रहा है मुझे बदमाश, आप इसके साथ बात करो। माता चिल्लाएगी वो लड़के के ऊपर, ऐ कौन हो तुम, मेरी बेटी को फोन कर रहे हो। लेकिन जमाना बहुत बदल गया आजकल। आजकल बेटियां अपने पास रखती है फोन, माता को भी दिखाते नहीं, बाथरूम जाते हैं फिर साथ में लेके जाती है, छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि देख लेंगे कौन किसका फोन किया है। इतना बिगड़ गया जमाना ऐसे। इसलिए हमारे संस्था में जो इस्कान संस्था है, जो धार्मिक संस्था है, ये सब विधि विधानों का हम पालन करने से हमारा संस्था बहुत श्रेष्ठ बनेगा। हम दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह लड़का जो होता है उसको भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब है 8 तरह के ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। जैसे एक ब्रह्मचारी को किसी भी स्त्री के साथ कुछ लंपट के समान बातचीत नहीं करना चाहिए, और एक स्त्री के बारे में बुरा विचार मन में नहीं सोचना चाहिए। हर स्त्री को माता के रूप में देखना चाहिए, योजना नहीं बनाना चाहिए संभोग के लिए, और किसी भी परस्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री के साथ मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो स्त्री किसका संपत्ति है, वो स्त्री उसके पिताजी का संपत्ति है। इसलिए हम भी विद्यार्थियों को हम प्रशिक्षण देते हैं, तुमको अगर गर्लफ्रेंड चाहिए तो उसके पिताजी को जाकर बोलना चाहिए, आपके बेटी हमको गर्लफ्रेंड के रूप में चाहिए। वो जरूर बोलेगा कि शादी कर लो, गर्लफ्रेंड के रूप में रखो उसको। करेक्ट है, यही ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भी युवक आते हैं, आप किसी को भी पकड़ कर पूछो आपका समझावट क्या है स्त्री के बारे में, यही बोलेंगे आपको। ये प्रशिक्षण ऐसा है, क्योंकि ये किसी भी स्त्री को गलत नज़र से देखना नहीं चाहिए पुरुष को, तो इस तरह का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अगर कोई पुरुष कामुक है तो वो चपल अद्रक बोला गया। चपल अद्रक का मतलब है उसका उसके चंचल होते हैं मन और इंद्रिय उसके हैं। तो इसलिए पुरुषों को भी जब ट्रेनिंग मिला है, स्त्रियों को ट्रेनिंग मिला है, और दोनों का जब शादी होता है तो बहुत प्रभावशाली बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे शुद्ध परिवार में शुद्ध बच्चे पैदा होते हैं और वो सारे दुनिया के लोगों को कल्याण कर सकते हैं। इस तरह प्रभुपाद जी ट्रेनिंग के बारे में जोर दे रहे हैं। आइए 21वां श्लोक रीड। अभी देखिए कश्यप क्या क्या प्रशंसा कर रहे हैं इनकी दीति की, देखिए, क्योंकि कमजोरी के कारण इस तरह प्रशंसा चल रहा है अभी। 21वां अनुवाद पढ़िए।
हे घर की रानी,
घर की रानी बोला रहे हैं उसको।
हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, न ही तुमने जो किया है उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं।
इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई पति अपने पत्नी को इतना ज्यादा प्रशंसा कर रहा है तो मान लेना चाहिए कि वो जोकिंग कर रहा है। वो ऐसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा होता भी है पति पत्नी के बीच में कभी कभी। देखिए लास्ट लाइन में बोलते हैं उतारतरी में, सच एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेजेस बाय द हस्बैंड फॉर हिज वाइफ और सर्टनली इन द मूड ऑफ जोकिंग, ये बताते हैं। फिर भी वो ऐसे मूड में है इसलिए वो उसको ऐसे प्रशंसा कर रहा है। लेकिन एक पति को कृतज्ञ भी होना चाहिए, पत्नी की ओर कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, बोल रहा है अगले श्लोक में 22वां श्लोक में कि मैं कर्जा जो लिया हूँ तुमसे मैं चुका नहीं पाऊँगा, तो मैं ज़रूर तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करूँगा, तुम्हारी इच्छा बच्चे के लिए इच्छा जो है उसको मैं, लेकिन तुम कुछ क्षणों के लिए रुको ताकि हमारे हमारे से गलती नहीं होगा। क्योंकि आगे के श्लोक में 23वां श्लोक में बोल रहे हैं कि इस समय संध्या के समय आपको मालूम है शिवजी एक बैल नंदी के ऊपर चढ़कर अपने इर्द गिर्द विविध भूत प्रेत पिशाच इत्यादियों को इकट्ठा करते हुए गुजरते हैं। ये गुजरने का समय है, शाम का समय। और वो क्या करते हैं, अगर कोई स्त्री पुरुष पति पत्नी संभोग कर रहे हैं उस समय में, वो एक पिशाच को पकड़कर उधर योनि में फेंक देते हैं। इस तरह करने से क्या होता है, वो पिशाच को एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो वो उनको थैंक यू बोलता है, पिशाच बोलता है शिव जी को धन्यवाद आपने हमको एक मानव शरीर दिया। वो जीवात्मा उसके लिए लाभ हो गया, लेकिन वो माता पिता को बहुत सताता है वो बच्चा, क्योंकि पिशाच अभी बच्चा बना है अभी। इसलिए कभी कभी माता पिता बोलते हैं अपने बच्चे को, पता नहीं कौन है पिशाच आकर हमारे घर में जन्म ले लिया, हमको तंग कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना माता पिता कभी। इस तरह उनको देखिए, इसमें दो चीज हो जाता है, क्योंकि वो लोगों ने गलत संभोग किया है इसलिए उनको दंड भी मिल जाता है, और ये पिशाच को एक अच्छा जन्म भी मिल जाता है, मनुष्य का जन्म एक चांस मिल जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं कश्यप, बोल रहे हैं कि देखो ये समय अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं। वो बोल रहा है कि गोस्ट आर विजिबल, बोल रहा है वो बोल रहे हैं कि शिव जी जो हैं दिखाई दे रहे हैं अभी शाम के समय, देखो गुजर रहे हैं शिव जी, ऐसे बोल रहे हैं वो। और इस तरह शिव जी क्या करते हैं, पिशाचों को प्रेतों को वो उनको भाग्य भी प्रदान कर रहे हैं, और जिन जो दंड के लिए योग्य है उनको दंड भी दे रहे हैं दोनों, इसे बताते हैं। और आइए 25वां श्लोक में जाएंगे, 25वां। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते।
शिवजी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राग पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने तीन नेत्रों से देखते हैं।
उनके तीन नेत्र क्या क्या है, सूर्य चंद्र और आग, ये तीन आंखें हैं, और उन तीन आंखों से हमेशा वो देखते रहते हैं। क्यों कश्यप बोल रहे हैं इसे, अरे दीदी ऐसा मत सोचो कि अगर तुम घर के अंदर रहोगी, कुंडी डाल दिया तो कोई देखने वाले नहीं है, ऐसा मत सोचो। शिव जी के तीन आंख खुले हैं, वो सूर्य और चंद्र और आग के रूप में इस दुनिया के सब जीवों को वो देख रहे हैं, इसलिए उनके दृश्य से तुम बच नहीं पाओगी। इसलिए गलत कार्य करने में तुम इस तरह गलत कार्य करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, इस तरह बोलते हैं 26। उधर बताए 26 में बताते हैं, न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृतो नोत कश्चित् विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धां आशास्महेजम् आशास्मजेहाम् आशास्मजेहेजाम् बतभुक्तभोगाम्। सर्वप्रथम बोल दिया उन्होंने, लॉर्ड शिवा रिगार्ड्स नो वन एज हिज रिलेटिव, बता रहे हैं कि देखो शिवजी कौन है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं उसको, बहनोई बोलते हैं, नहीं 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 बहनोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवर, देवर बोलते हैं, हाँ सिस्टर्स हस्बैंड, बहने बोलते हैं सिस्टर्स हस्बैंड, करेक्ट, हाँ बहने करेक्ट है क्या, हाँ बहने करेक्ट है ना, बहन के पति, हाँ वो बोल रहे हैं कि ठीक है, हाँ बहनोई भी बोलते हैं, देवर भी बोलते हैं ना उनको, देवर भी, हाँ जीजा जी बोलते हैं, हाँ जीजा जी बोलते हैं, करेक्ट, जीजा जी सब लोग जानते हैं ना जीजा जी, हाँ देखिए ये बोल रहे हैं कश्यप, जीजा जी हो सकते हैं शिव जी तुम्हारे, इसका मतलब नहीं कि तुमको दंड नहीं देंगे, हाँ क्योंकि वो इसलिए वो किसी का रिश्तेदार नहीं है बोलते हैं, वो तो दिव्य अवस्था पर है इस तरह बताते हैं, इसलिए कोई उनसे जुड़े नहीं है, इसलिए वो किसी के लिए अनुकूल भी नहीं है, विरुद्ध भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है उनके अंदर, वो समबुद्धि से सब जीवों को देखने वाले हैं ऐसा बताते हैं, वही प्रभु जी बता रहे हैं, लॉर्ड शिवा हैपन टू बी हिज ब्रदर इन लॉ, नो एक्चुअली लॉर्ड शिवा हैपन टू बी हिज ब्रदर इन लॉ, हाउ करेक्ट दैट, क्या बोलते हैं साला बोलते हैं उसका, हाँ करेक्ट, एक्चुअली ये पूर्व इसमें बताया है, इधर एक मिनट है, 26 हाँ क्योंकि पूर्व श्लोक में ऐसे बोलती है वो, माई ब्रदर इन लॉ शुड बी ट्रीटेड एज माई ब्रदर, दैट ही इज माई ब्रदर एंड योर ब्रदर इन लॉ, शुड यू नॉट बी शाई इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक दैट, ही इज आस्किंग, हु इज आस्किंग, और कश्यप इज आस्किंग, एक्चुअली वो कश्यप कुछ तो बोध दे रहे हैं उसको, लेकिन उसमें ये शक्ति ज़्यादा नहीं है उसमें, हैं स्ट्रांग नहीं है वो, हम ये भी पढ़ लीजिए, सताईसवां भी पढ़ लीजिए अनुवाद,
यद्यपि भौतिक जगत में तो मैं ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो,
करेक्ट, 28 ऑफ सेरे,
अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन्हें उन पर हंसते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं,
देखिए शिव जी का दो भूमिका बता रहे हैं इधर, एक है भौतिक लोगों के लिए, दूसरा है भक्तों के लिए, भौतिक लोग उनसे भौतिक पदार्थों को मांग कर हमेशा शिव जी के पास उस ले जाते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि शिवलिंग की बहुत अभिषेक बहुत स्थानों में होता है, क्योंकि वो शिव जी और पार्वती दुर्गा माता को विविध तरह के भौतिक पदार्थों को मांगते हैं, तो वही समझाया गया है इसमें, और जो आध्यात्मिक रूप से उनको वैष्णव के रूप में देखते हैं वो लोग भक्ति की आसना करते हैं शिव जी से, इस तरह शिव जी की विविध तरीके से उन्होंने गुणगान किया, ब्रह्मा भी बता रहे हैं कि शिव जी के विधि विधान के अनुसार चलते हैं ब्रह्मा भी, इतने बड़े ब्रह्मा भी ऐसे बताते हैं, हाँ इसलिए वो बहुत महान है, नाउ यू कम टू 30th वर्स, मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मतो मतितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर् वृषली इव गतत्रपा, इस तरह दिति ने देखा कि अरे ये बड़ा बड़ा उपदेश दे रहा है मुझे, ये तो सुनने वाला नहीं है, तो अगर इस तरह बोलता जाएगा तो मेरा अधोगति ही होगा कि मैं ऐसे ही अकेले रह जाऊंगी, मेरी सब सहपत्नियां हमारी ऊपर हंसेगी, इस तरह सोचकर उन्होंने कश्यप को बलात्कार किया, इसलिए बता रहे हैं कि वो वृषली व गतत्रपा, गतत्रपा का मतलब है कुछ भी शर्म के बिना वो उनको पाबंदी किया इस तरह। तो ये बता रहे हैं जिस तरह अगर कोई व्यक्ति के अंदर जब हृदय में काम क्रोध लोभ ये तीन चीज होते हैं, इनको बहुत बड़े कलमश माने गए हैं। जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध लोभ उत्पन्न हो उसको शांत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। शास्त्र बताते हैं कि जो पाने के लिए कठिन से कठिन चीज है परम सत्य भगवान भगवान, उनको पाने के लिए हमें यत्न करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ों के लिए हमें इच्छा नहीं करना चाहिए उन चीज़ों को त्यागने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे रावण ने इच्छा की सीता को पाने के लिए, बड़ा गलत इच्छा था, लेकिन उसको सीता को त्यागने के लिए तपस्या करना चाहिए था उसको, लेकिन किया नहीं। इस तरह दुर्योधन के मन में इच्छा आया कि पांडवों को सर्वनाश किया जाए ताकि मैं अकेले सारे दुनिया का शासन कर सकूं, वो भी गलत इच्छा था। अनेक लोगों ने उपदेश दिया उसको, मार्कंडेय ऋषि ने उपदेश दिया, नारद ने उपदेश दिया, ऐसे अनेक बड़े बड़े ऋषिमुनि आकर उसको उपदेश देते हैं, सबका उपदेश ऐसे सुनकर ऐसे छोड़ दिया उसने दुर्योधन ने ऐसे। इस तरह हम लोग भी सोच लेना चाहिए अपने जीवन में कुछ भी गलत कार्य करने के पहले कुछ हमको सही लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए जिनके उपदेश से हम अपने चित्त को ऊपर उठा सकते हैं, अधोगति में जाने के बदले हम ऊंचे गति में हम जा सकते हैं। इसलिए संघ की बहुत आवश्यकता है, अच्छे संघ की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग एकदम उत्साही होते हैं भक्तिमय जीवन में वो लोग अनेक लोगों को भी कृष्ण भावनामृत में आकर्षित करते हैं। जो लोग बहुत आलसीपन दिखाते हैं भक्तिमय जीवन में वो भौतिक जीवन में बहुत उत्सुक होकर और गड्ढे में गिरते जाते हैं। इसलिए इधर देखा जा रहा है कि दोनों कमजोर थे, इसके कारण दिति ने देख लिया कि ये मेरे पुरुष कुछ तो बोल रहा है लेकिन उसको भी अभी बच्चे पैदा करने की इच्छा है, इस तरह सोचकर वो उसको पाबंद किया। उस समय पति ने ये 31वां श्लोक रीड द 31।
अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए।
हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो उदाहरण देते हैं। एक है कश्यप बोलते हैं कि वो शिव जी का बड़ा भक्त था लेकिन वो ब्रह्म जो ये व्हाट इज इम्पर्सनलिस्ट ब्रह्मवादी था, वो ब्रह्मवादी होने के कारण वो कमजोर पड़ा। और दूसरे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर, जिसके सामने एक वेश्य आकर उनको आकर्षित किया लेकिन हरिदास ठाकुर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह लगातार हरिनाम करते 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 एक व्यक्ति का एकाग्रता चित्त हो जाता है। उस एकाग्रता चित्त जब प्राप्त होता है तभी हमारे चित्त में बैठे हुए मल खत्म हो जाते हैं। देखिए मल खत्म हो गया का मतलब क्या है, एक खूबसूरत स्त्री को देखने के बाद भी हरिदास ठाकुर के हृदय में कुछ विचलन नहीं आया, वो इसके एकदम विरुद्ध उसको भी उन्होंने भक्ति दिलवा कर उनको भक्ति में आगे बढ़ाया। वो तीन दिन के बाद वो भक्त बन गई, वो सर मुंडन कर लिया, सब अपने धन दौलत को वितरण कर दिया ब्राह्मणों को, वो महान भक्त बन गई। वो इतना तक कि वो सारे गांव के लोग आकर उसे उपदेश लिया उस स्त्री से, पहले तो वेश्या थी वो। इस तरह हरिदास ठाकुर पद दलित नहीं हुए, इसके एकदम विरुद्ध उसको ऊपर उठाया भक्ति में ऐसे। तो आप लोग जानते हो सौबर मुनि नाम की एक मुनि था, किधर तपस्या किया उसने, पानी के अंदर जाकर किया। क्यों पानी के अंदर गया मालूम है आपको, किसका, यू वॉन्ट टू गेट, नो पानी के अंदर क्यों जाकर तपस्या किया उसने, पानी के अंदर जाकर तपस्या कर रहा था वो, क्यों, ऑल ऑफ यू डोंट गिव आंसर, दिस क्वेश्चन इज फॉर दैट। हाँ बोलिए जी, पानी में क्या है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पानी में चलने के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, ऑलरेडी योग सिद्धि प्राप्त कर चुका था वो। हमारे में कितने लोग हैं पानी के अंदर जाकर हमारे कृष्ण कर सकते हैं? 2 मिनट कर सकते हैं, 2-3 मिनट, उसके बाद ऊपर आना पड़ेगा। वो पानी के अंदर बैठ गया जाकर, बैठ करके ऐसे महीनों महीने सालों साल कर रहा वो तपस्या, लेकिन पानी के अंदर क्यों गया? वो डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं उसको, अपने मन को संयम करने के लिए। उसने सोचा कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ लोग आवाज कर रहे हैं, लोग इधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और विविध माया के प्रलोभन हैं बाहर, अगर पानी के अंदर चले जाओगे तो प्रलोभन नहीं होगा ना, इसलिए प्रलोभन को छोड़ने के लिए पानी के अंदर गया वो। लेकिन पानी के अंदर तपस्या करते समय कुछ आवाज सुनाई दिया, वो आंख खोल कर देखा, उधर 2 मछलियां संभोग कर रही थी। उसको देख कर इसके मन में काम वासना उठा, जागृत हो उठा, तो बाहर निकला पानी से, उसका शरीर में हड्डी दिख रहे थे, क्योंकि सालों साल वो पानी के अंदर रहकर उसके शरीर इतना जीर्णित हो गया था वो। हाँ, तो आकर राजा को मिला, मंदाता राजा को बोला कि राजन, अभी अचानक शादी करने की इच्छा जागृत हुआ है, क्या आपकी बेटी को दोगे मुझे शादी में? तो राजा ने ऊपर नीचे देखा इसको, ये बुड्ढा पूरा जटाधारी है, हाथ ऐसे गिड़गिड़ रहा है इसका, इसको मेरी बेटी को कैसे दे पाऊंगा मैं, अगर ना बोलूंगा तो शाप देगा है ना, क्योंकि योगी बड़ा योगी है, हो सकता है क्रोधालु है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है जाइए अंतपुर में जाइए, जो बेटी आपसे आकर्षित होती है उससे शादी कीजिए, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो ये भी समझ गया, ये तो बुद्धिमान था, ये सोचा कि ऐसे में गिड़गिड़ाने वाले शरीर के साथ जाऊंगा तो कौन शादी करेगी मेरे साथ है? इसलिए उसने क्या किया, अपने मंत्र शक्ति से अपने शरीर को बदल कर एकदम सुंदर राजकुमार के समान बना लिया अपने आप को, एक टर्बन पहना, कुंडल पहना, तो शरीर एकदम मजबूत चकाचक शरीर लेते हुए पहुंच गया उधर अंतपुर में। सब 50 बेटियों ने देखा मंदाता राजा के, 50 के 50 स्त्रियां झगड़ा करने लगी, मैं करूंगी शादी उससे, मैं करूंगी। तो राजा ने पूछा, आप ही चुन लो, अभी सब झगड़ा कर रहे हैं, क्या किया जाए? वो बोला कि 50 के 50 को कर लूंगा, हाजिर कर लिया उसने। तो ये कथा आता है भागवत में, देखिए ये आंख बंद करके पानी के अंदर जाकर तपस्या करने वाले तपस्वी भी विचलित होकर बाहर आकर शादी करके 50 स्त्रियों के साथ करके संसार में सालों साल रहकर उसके बाद जागृत हो गया, सोचा कि अभी हम भक्ति में जुड़ेंगे ऐसे। लेकिन हरिदास ठाकुर आंख खोल कर ही बैठे थे, वेश्य आकर उनके सामने आकर दंडवत प्रणाम किया, वो वेश्य बोल रही थी कि हरिदास आपका शरीर भी तंदुरुस्त है, मैं भी तंदुरुस्त हूँ, हम दोनों युवावस्था में हैं, चलो हम जंगल में आकर भोग करते हैं, इधर कोई हमको देखने वाले नहीं। लेकिन वो बोले, देखो मेरा माला बाकी रह गया है, अभी माला हम पूरा कर लेंगे, हमने 10 लाख नाम करने की कुछ वचन लिया है, तो हम माला पूरा करने के बाद आप जो भी बोलोगी तुम्हारी इच्छाओं को हम पूर्ति करेंगे, तुम बैठो ध्यानपूर्वक नाम को सुनो, बोला उन्होंने। तो बैठ गई तुलसी के सामने, नाम सुनने लगी, तो नाम करते गए रातों रात भर। सुबह जब सूर्य का उदय हो गया, ये वेश्या उठ गई, बोली कि अभी क्या सुबह सूर्य आ गया, आपने धोखा दे दिया हमको। वो बोले नहीं, आज शाम को आओ, बोला। दूसरे दिन शाम को आई, तीसरे दिन शाम को आई, लेकिन रात भर वो क्या सुन रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सुन कर। और वो भी शुद्ध भक्त जप कर रहा है ना, शुद्ध भक्त का वाणी में बहुत ताकत है उसमें। एक बार एक रानी धर्मशाला करके एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में नवद्वीप में, तो इस धर्मशाला में अनेक साधु महात्मा लोग जा पहुंचते थे, उधर रहते थे रात के लिए कुछ दिनों के लिए। तो गौर कृष्णदास बाबा जी ने भी गया था उधर कुछ 1-2 दिन के लिए, वो धर्मशाला में रहकर निकल गए उधर से। लेकिन निकलने के बाद कोई नहीं थे धर्मशाला में, लेकिन और एक व्यक्ति आया उधर ठहरने के लिए, तो उसका आवाज सुनाई दे रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो उसका आश्चर्य हो गया, किधर से आवाज आ रहा है? पूरा बाहर जाकर देखा, अंदर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, तो मालिक को लेकर आया, वो आकर दिखा कि क्या आवाज आ रहा है, तो उसने दीवार में रखकर देखा दीवार से आ रहा है, ईंट से निकल रहा है आवाज। तो उनको पूछा कि आवाज, तो तभी वो मालिक को मेंटेन करने वाला, उसने बोला कि ये आवाज किसका मालूम है, गौर प्रसाद बाबा जी का, तो ये जप करके छोड़कर 3-4 दिन हो गया तभी भी आवाज निकल रहा था, वो इतना तक कि उनके हरे कृष्ण मंत्र को पकड़ कर रखा है ईंटों ने, ईंटों से निकल रहा था आवाज ऐसे। इस तरह शुद्ध भक्त की वाणी में बहुत ताकत होता है, इसके कारण हरिदास ठाकुर की दिव्य वाणी को सुनकर वो वेश्या के चित्त में मल जो बैठा था सब खत्म हो गया। तीसरा दिन वो जोर से रो पड़ी, उनके पांव में गिर पड़ी, बोला कि मैं आपको पददलित करने के लिए आई थी कुछ बुरे भावनाओं को लेकर, रामचंद्र खान ने भेजा है मुझे, वो ईर्ष्यालु है आपके ऊपर, तो आपके आपको चरित्रहीन बनाकर प्रदर्शित करने के लिए सोच रहा था, इसलिए मैंने मुझे भेजा। लेकिन वो बोली आपकी भक्ति भावना से मैं प्रभावित हो गई, मैं अनासक्त हो गई दुनिया की चीज़ों से, मैं सब तरह के गलत कामों को छोड़कर मैं भक्ति में जुड़ना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर उनको माला देकर बोला कि साहब के सब धन दौलत को वितरण कर दो ब्राह्मणों को, और तुम भक्ति तुलसी के सामने बैठकर नाम जपो, तुमको इसी जीवन में तुम उद्धार हो जाओगी। इस तरह बोलकर उस बस्ती से निकल गए वो हरिदास ठाकुर। तो बाद में वो इतनी महान भक्त बनी, वो सारे गांव में प्रभाव डाला उन्होंने, उसके भक्ति का प्रभाव डाला उन्होंने। तो हरिदास ठाकुर खुले आंखों से वेश्या को देखने के बाद भी उनके हृदय में अविद्या नहीं था, अज्ञानता नहीं था, इसके एकदम विरुद्ध उनकी आंखों में प्रेमांजन था। तो प्रेमांजन होने के कारण वो उस वेश्या को एक क्षुद्र जीव के रूप में देखा उन्होंने, इधर एक बद्ध जीव आया है जो तड़प रहा है इस दुनिया में कृष्ण की प्रेम के लिए, तो इस तरह प्रेम प्रदान किया उन्होंने। तो मैं क्यों बोला आपको, हम लोगों को भी अविद्या जो बैठा हुआ हमारे चित्त में उसको शुद्ध करके हमारे आंखों में प्रेमांजन आना चाहिए। उस अवस्था में हम इस तरह के नीच विचारों से हम ऊपर उठ जाएंगे ऐसे। लेकिन इधर जो बताया जा रहा है जैसे कश्यप के बारे में, क्योंकि वो ब्रह्मवादी होने के कारण उनको ऊंचा आस्वाद नहीं मिला, परम दृष्ट्वा निवर्तते बोलते हैं ना, वो ऊंचा आस्वाद नहीं मिल रहा था, इसलिए आगे पढ़िए 32।
तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया।
या अभी नहा धोकर आकर जैसे कुछ कोई विष्ठा करता है, मलमूत्र करने विसर्जन करने के बाद नहाना होता है क्योंकि सारा शरीर गंदा हो जाता है, इस तरह संभोग कार्य करने के बाद भी नहाना होता है। ये नहाकर गायत्री करता है, मन को शांत करता है। अभी आगे जो चल रहा है ये महत्वपूर्ण चीज सीखने के लिए आ रहा है इधर 33 श्लोक में आ जाइए। दितिस्तु व्रीडिताते न कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधो मुख्यभाषत मुख्यभाषत।
हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई, उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था, उसने इस प्रकार कहा।
तात्पर्य
जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावतः नतमुख हो जाता है। दीति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्त्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है।
हाँ, देखिए लास्ट लाइन बड़ा स्ट्रांग लाइन बोलते हैं प्रभुपाद जी हैं। तो सेक्स लाइफ इज नॉट फॉर रिक्रिएशन, सेक्स लाइफ इज फॉर प्रोक्रिएशन, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये स्त्री पुरुष का संभोग ये कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पुत्र उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये टॉप लेवल स्टैंडर्ड है, ये शास्त्र बताते हैं। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने आदिकाल में जब स्त्री पुरुषों को सृष्टि किया, कोई भी पुरुष तैयार नहीं थे शादी करने के लिए। सब लोगों ने बोला कि हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे और संसार के झंझट में नहीं पड़ेंगे हम। वो उन्होंने बोला कि हमको साधु बनने दीजिए, इसलिए उन दिनों में अनेक लोग साधु बनते थे और पुरुषों की संख्या कम हो गया, स्त्रियों की संख्या बढ़ गया, इसलिए एक एक पुरुष को अनेक स्त्रियों से शादी करना पड़ा उस जमाने में। कभी कभी एक व्यक्ति 4, 5, 10 ऐसे लोगों से शादी करने की अनुमति थी उस जमाने में। और इसका कारण क्या था, ब्रह्मा ने देखा कि पुरुषों को रुचि नहीं है शादी करके संसार चलाने में, इसलिए उन्होंने क्या किया, संभोग का रुचि रखा। तो ये वीर्य के वीर्य स्खलन से जो पच्चा उत्पत्ति होता है, उस समय एक तरह का एक सुख का अनुभव होता है, जो स्वर्गीय सुख होता है उसको बोलते हैं। वो स्वर्गीय सुख को भौतिक शरीर में रखा है इस तरह। लेकिन जितना पुरुष स्त्री के बीच में उस सुख का, संभोग का सुख मिलता है, उतना उनको क्या करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने में तकलीफों को अपनाना पड़ेगा उनको, तो ना बैलेंस हो जाता है। तुमको इधर सुख मिलता है लेकिन इतना तकलीफ भी स्वीकार हो। तो लेकिन आजकल क्या करते हैं, अगर कोई बच्चे पैदा करने के बदले क्या करते हैं, सुख भोग करना चाहते हैं लेकिन एक टैबलेट लेकर बच्चे को ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो अबॉर्शन करते हैं, वो बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि अबॉर्शन में क्या होता है, बच्चे के स्कल को ऐसे क्रश करके क्या करते हैं, दिमाग को निकाल देते हैं पहले, उसके बाद एक चाकू लेकर बच्चे के शरीर को काटते हैं ऐसे, उसके बाद कुछ द्रव को डालकर उसको बाहर निकाल देते हैं इस तरह। तो आजकल जो करते हैं इस तरह के काम बहुत आसानी से, उन लोगों को नरक में एक सीट तैयार हो रहा है उनको, इस तरह शास्त्र बोलते हैं। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये एक व्यक्ति को चाकू लेकर मारने के बराबर है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। क्योंकि बच्चे कभी, जब पुरुष स्त्री का संभोग हो गया, बच्चे का आत्मा अंदर चला गया है, उसको मारना नहीं चाहिए इसे। एक ही इसके लिए एक अपवाद है, अगर माता का जान बचाना है तो बच्चे मरना पड़ेगा, इसे अगर डॉक्टर बोलता है तो तभी बच्चे, कभी बच्चे को छोड़ देते हैं मरने के लिए, क्योंकि माता और भी बच्चे पैदा कर सकती है, बच्चे को छोड़ सकते हैं। माता और बच्चे के बीच में अगर माता की जान बचाने के लिए बच्चे को त्यागना हो तो त्यागेंगे वो, नहीं तो बच्चे को मारना नहीं चाहिए, इस तरह शास्त्र बताते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि अगर बच्चे को नहीं मारना है तो अगर हम संभव करते जाएंगे तो हमारा 10, 20, 50 बच्चे हो जाएंगे, क्या होगा, कैसे हम संभाल पाएंगे उनको, इसलिए कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिस करना चाहिए अभ्यास। ऐसा कृष्णा भावनामृत अभ्यास करके जब गंभीर बनेगा भक्ति में, तो उसके द्वारा पति पत्नी दोनों को ऊंचा आस्वादन प्राप्त होगा, इस तरह शास्त्र बताते हैं। लेकिन इधर एक महत्वपूर्ण बात है, हमने सुना, मेरे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, इस तरह पति पत्नी के बीच में अगर कोई कमजोर है, अगर पारिवारिक जीवन को तोड़कर अगर वो पर पुरुष परस्त्री से वो संभव करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड कैपिटल आई इलिसिट सेक्स। लेकिन पति पत्नी के बीच में वो भगवान को भूल कर माया में पढ़कर इस तरह जो द्विती कश्यप ने किया इस तरह करते हैं, उसको स्मॉल आई इलिसिट सेक्स बोलते हैं, समझे ना आपने, दोनों को इलिसिट बोलते हैं, लेकिन वन इज स्मॉल एंड वन इज बिग ऐसे बोला जाता है। तो इधर कश्यप ने उनकी साथ दिया द्विती के, लेकिन ये होने के बाद द्विती अपने सर झुक कर अपने उनको शर्म आ रहा है कि हमने बड़ा गलती हो गया हमारे हाथ से, इस तरह सोच रही है। अभी द्विती बोल रही है, देखिए 34 में, द्विती रुवाच नमे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधीत् रुद्र पतिर्हि भूतानां यस्या करवम करवमं हसम
सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखे कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरे यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है।
हाँ, अभी प्रभा जी तात्पर्य था बता रहे हैं, तात्पर्य पढ़िए 34 में।
दीति को अपने अपराध का भान था और वह चाहती थी कि शिवजी उसे क्षमा कर दे। शिवजी को दो लोकप्रिय नाम हैं, रुद्र तथा आशुतोष। वे तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। दीति जानती थी कि तुरंत क्रुद्ध हो जाने के कारण वे उस गर्भ को नष्ट कर सकते हैं जिसे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया था, किंतु वे आशुतोष भी हैं। अतएव उसने अपने ब्राह्मण पति से शिवजी को शांत करने में सहायक बनने के लिए अनुनय विनय की, क्योंकि उसका पति शिवजी का महान भक्त था। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि शिवजी दीति पर क्रुद्ध हो क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया था, किंतु वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया।
हाँ, ये महत्वपूर्ण तात्पर्य है। देखिए, अगर किसी के हाथ से गलती हो गया तो वो दंड के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, तो इधर दीति सोच रही है कि क्या दंड देने क्या दंड देंगे शिव जी। हो सकता है कि क्योंकि गलत संभव के कारण शिव जी क्रुद्ध होकर ये गर्भ को ही नष्ट कर देंगे, होने की संभावना है। लेकिन सोच रहे कि इसके बदले और कुछ दंड देंगे तो अच्छा रहेगा, गर्भ को बचाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बच्चा भी होना चाहिए ना, इसलिए तो संभव किया, बच्चा चाहिए कर गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि कैसे बच पाऊंगी, अगर मैं शिव जी के सामने आ जाऊंगी तो वो मेरे से बहुत क्रुद्ध हो जाएंगी, क्योंकि गलती किससे पहले हुआ, मेरे हाथ से हुआ, इसलिए मैं अकेले शिव जी के सामने आने के बदले में मेरे पति को सामने डालूंगी, क्योंकि मेरे पति शिव जी का भक्त भी है और साथ साथ शिव जी उनको प्रेम भी करते हैं। जैसे इंद्र को जब माफी मांगना था कृष्ण से, उन्होंने किसी को साथ में लाया, हाँ सुरभि गाय को साथ में लाया, सुरभि को सामने डाल दिया, सुरभि को देखते ही कृष्ण खुश हो गए, उसके बाद इंद्र बाहर निकला, उसके बाद वो भी सामने आकर झुका उसके बाद, क्योंकि भगवान के हृदय में कुछ अनुकूल भावनाओं को जागृत करने के लिए इंद्र ने ऐसे किया। ऐसे ही ये भी कर रही है दीति, अगर शिव जी मेरे से कुपित हो जाएंगे तो मेरे सामने मेरे पति को डाल दूंगी जो उनका ही भक्त है, तो शिव जी थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं माफ़ी मांग लूंगी, इस तरह से वो सोचती है। इससे हम लोग एक विषय सीखते हैं, पहला चीज़ कि हम अनजाने से इस दुनिया में अनेक गलती होता है। जैसे एक बार ये काउंसलर बता रहे थे, उनके ग्रुप में ये काउंसलिंग क्लास में नहीं आ रहे थे रेगुलर, 3 महीना हो गया आए नहीं मंदिर में, फ़ोन भी करते थे, फ़ोन को कट कर देते थे वो, हैं नहीं तो उठाते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो गया, उनकी 3 महीना हो गया, अभी मीटिंग में नहीं आए, मंदिर में भी नहीं आए। तो काउंसलर सीधा पहुंच गए उनके घर में, जाकर देखा दरवाजा तो खुला था, काउंसलर बैठकर टेलीविजन देख रहे थे, कुछ तो मूवी चल रहा था, हॉरर मूवी है, थाट पुट करके तोड़ रहा था टीवी में, कोई ऐसे मूवी देख रहे थे वो। तो ये जब काउंसलर पहुंच गए, काउंसलर को बहुत बुरा लगा कि काउंसलर सीधा आ गए घर में, तो अपने बच्चे को बुला रहे थे, ए बच्चे इधर आ जाओ, किधर है रिमोट कंट्रोल, किधर रखा है टीवी का रिमोट, पता नहीं रिमोट कहीं तो घूम गया है, इधर उधर भाग रहे थे, वो बंद नहीं कर पाए टीवी, इसलिए उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया उसके ऊपर। और काउंसलर को बोला कि मेरा बच्चा देख रहा था मूवी, मैं देखता नहीं प्रभु जी, कभी कभी उसको कंपनी देता हूँ साथ में बैठ कर उसको, लेकिन मैं रेगुलर नहीं देखता हूँ, ऐसे बोल रहे थे वो। तो काउंसलर उनको बाहर लेके गए कुछ मंदिर में, बैठ कर उनसे बात किया कि आप रेगुलर मीटिंग में आना चाहिए, मंदिर में रेगुलर आना चाहिए। तो काउंसलर ने मान लिया कि प्रभु जी आपको क्या बोलूं, अभी 3 महीने में घर में कुछ समस्या हुआ था, कुछ रिश्तेदार आए थे, कुछ पैसा की समस्या थी, अभी हमारा माला तो रुक गया, 3 महीना छोड़ दिया हमने माला, हमको डर था कि अगर आपको आकर बोलूंगा कि मैं माला छोड़ दिया तो और आप भी कुपित हो जाएंगे, इसलिए मैं आया ही नहीं, इस तरह बोले वो। तो उसके बाद बोला कि अभी मैं तुरंत शुरू कर दूंगा, माला शुरू कर दिया उन्होंने। इस तरह से देखा जाता है कि कभी कभी भक्ति से कुछ लोग बिछुड़ जाते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं, कभी कभी देखा जाता है इस दुनिया में। इस तरह कभी कभी अगर किसी का माला टूट गया बीच में, तोड़ दिया, 3-4 दिन नहीं किया, अगर ऐसा हुआ कुछ कारणवश, उसको तुरंत पूरा कर देना चाहिए माला को। कभी एक विद्यार्थी था, वो बोला उसके छुट्टी के पहले आया मेरे पास, प्रभु जी अभी घर जा रहा हूँ छुट्टी में, लेकिन मेरा माला थोड़ा बचा है, पूरा करना पड़ेगा, एग्जाम के कारण कर नहीं पाया माला। मैंने पूछा कितना? 350 माला बचा है। 350 माला? ये 16-16 माला गिन कर रखा है वो, हैं इतने इतने महीनों महीने का ऐसे, हैं इतना माला नहीं रखना चाहिए हैं एक भक्त को। तो एक माला कम हो गया एक दिन, अगले दिन किया, कभी कभी किया हुआ ठीक है। लेकिन इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी कुछ गलती होता है तो पहला चीज माफ़ी मांगना चाहिए। ये माफ़ी मांगने के मूड में है ये दीति, ऐसा नहीं बोल रही कि सब ठीक ठाक है अभी कौन क्या करेगा, ऐसा नहीं बोल रही है, वो माफ़ी मांग रही है। दूसरा है अपने पति को सामने डाल रही है जो शिव जी के लिए प्रिय है। इस तरह हम लोग भी सही ढंग से अगर गलती कुछ हुआ तो माफ़ी मांगने के लिए सही व्यक्ति के साथ हमें जाना चाहिए। अभी भक्तिमय जीवन में अनजाने से जो गलतियां होता है जैसे हमने बोला, लेकिन जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। दीति के साथ क्या हुआ? अनजाने से हुआ, जानबूझकर हुआ, जानबूझकर हुआ। वो किस नंबर का अपराध है? 7वां अपराध है। नामनो बलाद जैसे कि पाप बुद्धि, जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। अनजाने से कभी कभी पाप होने की संभावना है तो इधर इसलिए, लेकिन जानबूझकर पाप हो गया लेकिन अभी वो सोच रही है कि अभी बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये इस तरह से ढूंढ रही है। और आगे का एक श्लोक पढ़कर हम प्रवचन का विराम देते हैं, अगले बार हम कंटिन्यू करेंगे। नमो रुद्राय महते देवो देवायोग्राय मीडुषे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे।
मैं उन क्रुद्ध शिवजी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है।
देखिए इस श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, ये बता रहे हैं कि आप रुद्र हो लेकिन आप महत्व भी हो। रुद्र का मतलब है जो दंड देने वाले, क्योंकि संहार काल में शिव जी तांडव करके सारे दुनिया का संहार करते हैं ना, इसलिए रुद्राय कुपित हो जाने वाले। लेकिन महते, लेकिन आप आशुतोष भी हो। आशुतोष का मतलब है जिस व्यक्ति को बहुत आसानी से हम कुश कर सकते हैं, आशुतोष नाम है। और देवाय उग्राय बोल रही है, उग्राय का मतलब जो उग्र है। लेकिन मीडुषे का मतलब है लिबरल, उसका मतलब है आप माफ भी करा देते हो किसी का। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? शिव जी कब उग्र हुए? जब मदन आकर उनको उनके ध्यान को तोड़ने के लिए प्रयत्न किया, तभी शिव जी ने अपने तीसरा अंग खोलकर मदन को जलाकर भस्म बना दिया था ना, तो भगवान शिव जी इस तरह कुपित होते हैं। लेकिन भगवान शिव जी ने किसको माफ किया? किसी व्यक्ति को माफ किया उन्होंने कभी? किसको माफ किया? दक्ष प्रजापति को, करेक्ट है ना? उसको दक्ष को माफ कर दिया। बाद में आकर वो दंड प्रणाम करता है, शिव जी से माफी मांगता है, उसको माफी मिल जाता है उसको बाद में। इस तरह शिव जी माफ भी कर सकते हैं एक व्यक्ति को ऐसे। इस तरह वो दोनों गुणों को वो घोषित कर रही है, बता रही है। शिवाय, शिवाय का मतलब यू आर ऑल ऑस्पिशियस, न्यस्त दंडाय एंड ही विल नॉट पनिश मी, ऐसे बोल रही है। न्यस्त दंडाय का मतलब है जो माफ कर देने वाले, न्यस्त दंडाय इस तरह बोलती है। धृत दंडाय का मतलब क्या है? उनके अंदर दंड देने के लिए क्षमता है फिर भी वो दंड नहीं देंगे, ऐसे बता रही है। मन्यवे, वो देखिए बुद्धिमता के साथ ये प्रार्थना कर रही है कि बोल रही है कि आप क्रोध, आप क्रोधी व्यक्ति हो और आप जो लोग पाप करते हैं उनके ऊपर आप क्रुद्ध हो जाते हो और दंड भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन अंत में आप माफ कर देते हो उनको। इस तरह इसका मतलब क्या है, आपके अंदर क्षमता है दंड देने के लिए, आप नहीं देते, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर किसी के अंदर दंड देने के लिए योग्यता ही नहीं है, उसका माफ करने के क्या मतलब है ना, इसलिए वो इस तरह गुणगान कर रही है। अगर इस तरह बोलने से क्या होगा, शिव जी को भी लगेगा कि देखो ये मान लिया कि मैं दंड देने के लिए योग्य हूँ, कम से कम हमारे हमारे शक्ति को जान लिया है इन्होंने, इस तरह सोचेंगे। इस तरह ये शिव जी को गुणगान करके माफ मांग रही है। हाँ, इस तरह ब्रह्मा जी भी एक सुंदर माफी मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कृष्ण को, हे भगवान, ये ब्रह्मांड एक माता के योनि के बराबर है, गर्भ के बराबर है, और माता के गर्भ में जब बच्चा होता है कभी कभी लात मारता है माता के, इसके अंदर आपने देखा है कभी बच्चा माता को अंदर ही अंदर अपने पांव से ऐसे ये करता है, तो खास करके 8 महीने होने के बाद माता को अनुभव होता है। 8-9 महीने में जब गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा अंदर तैरता है, इसलिए थोड़ा ऐसे मार, लेकिन माता उस बच्चे को बुरा नहीं मानती है, दंड नहीं देती कि अंदर क्यों लात मार रहा है इसे, है ऐसे। इस तरह मैं भी इस ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए कुछ ऐसे काम किया हूँ, आपके भक्तों को छुपा कर रखा हूँ, इस तरह कुछ शरारती काम किया हूँ, नटखट काम किया हूँ, लेकिन जिस तरह एक माता अपने बच्चे को माफ कर देते, इस तरह आप मुझे माफ करा दो, इस तरह याचना करते हैं। इस तरह इंद्र भी कैसे माफी मांगते हैं मालूम है, कृष्ण के पास जाकर इंद्र बोलते हैं कि भगवान मैं मूर्खों में से सबसे श्रेष्ठ मूर्ख हूँ, ऐसे बोलते हैं अपने बारे में, है मेरे जैसे मूर्ख दुनिया में कोई होगा नहीं मेरे जैसे, लेकिन वो बोल रहे हैं आप जो हो आप सिर्फ नियंत्रणकर्ता ही नहीं हो लेकिन आप गुरु भी हो, क्यों, अगर आप नियंत्रणकर्ता होते तो मुझे एक बाण धनुष बाण लेकर मुझे मार डालते थे पहले से, आप आसानी से पराजित कर सकते थे, लेकिन इसके विरुद्ध आपने क्या किया, हमारी मेरे चित्त को शुद्ध कराने के लिए आपने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ये सारी दुनिया को दिक्कत दिया कि मेरा स्थिति क्या है और आपका स्थिति क्या है, और मेरे मन में जो भी बुरा विचार था ब्रजवासियों के बारे में आपके बारे में सब निकल गया, अभी मैं समझ गया कि जैसे बलून का हवा निकाला जाए सोकर ऐसे हो गया मैं अभी, हैं मेरा अहंकार को चूर चूर करा दिया आपने, इसलिए आप नियंत्रणकर्ता ही नहीं हो आप गुरु भी हो, ऐसे बोले। इस तरह हम लोग भी जब माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं कभी कभी लोग ठीक ढंग से माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर किसी को बोले वरिष्ठ भक्ति के पास जाओ माफ़ी मांगो, वो अगर बोलेगा भाजी माफ़ कर दो ठीक है ना, बोला अरे वो बोलेंगे अरे माफ़ कर दो ये मांगने की तरीका है क्या, वो बोलेगा हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, वो प्रभु जी ने बोला करके हम आए हैं, ठीक है ना, ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि गलती तुम्हारा आपका है हमारा नहीं है, क्या माफ़ी मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। इसलिए माफ़ी मांगने का सही ढंग जाना चाहिए। और भी 2-4 श्लोक हैं इसमें जो हम अगले सत्र में इसको जारी रखेंगे, हम पूरा कर देंगे अगले सत्र में, इस अध्याय को पूरा कर देंगे अगले सत्र में। शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, और भक्तवृंदा की।